ओम शांति।
अगर प्यार नहीं है तो व्यक्ति जीवन को बोझ समझता, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मनुष्य का दिल टूट जाता है और बार बार वो ये कहता है कि ये भी कोई जीवन है, ये तो सूना सूना जीवन है जिसमें आत्मीयता ना हो, श्रेय ना हो, कोई उसे चाहता ना हो, तो ऐसा लगता है कि ये जीवन बेकार है। लेकिन जो लोग इस तरह की बात कहते हैं उन्हें तो सांसारिक प्यार का अनुभव है, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व वो जानते हैं। लेकिन जो प्रभु प्यार है वो तो एक बिल्कुल ही निराला है। उसके बिना जो जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं, जो सबसे अनमोल अनुभव है, महानतम जो शिखर है जीवन का, उस तक पहुंच ही नहीं सकते। प्रभु प्यार ही ऐसी सीढ़ी है जिससे हम आनंद के अनुभव के शिखर पर पहुंच सकते हैं। कोई योग लगाता रहे, ज्ञान सुनता रहे, क्लास करता रहे, नियम मर्यादा की चर्चा करता रहे, लेकिन अगर उसके जीवन में प्रभु का प्यार नहीं है तो वो उसके योग की, ज्ञान की, धारणा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो भी निम्नतर स्तर की होती है, व्यस्त ही होती, ऊंची नहीं होती। लेकिन प्यार भी अनेक प्रकार का होता है। माता बच्चे का प्यार, पिता पुत्र का प्यार, गुरु का शिष्य के प्रति प्यार, भाई का भाई के प्रति प्यार, दोस्त का दोस्त के प्रति प्यार, जिसे हम प्यार कहते हैं, वो प्यार संबंध से अलग अलग रूप लेता जाता है। प्यार का संबंध से क्वेश्चन कनेक्शन है। इसलिए बात यहां आके पहुंचती है कि संबंध जीवन की धुरी है। हमारा सारा जीवन संबंधों की धुरी पर घूमता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश हुई, जन्म लिया, वहां 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 करने लगा, छोटा बच्चा म्याऊं म्याऊं करने लगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको कहना शुरू किया, ये तेरी माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, तो जन्म लेते ही उसके संबंध शुरू हो जाते। जिनके यहां जन्म लिया वो उसके माता पिता है। जन्म लेना ही संबंधों में आ जाना है। संबंधों के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट के लॉस को ओबे करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है, लेकिन माता पिता के यहां जन्म लिया तो संबंध शुरू हो गए। संबंध से ही सर्व प्रकार की प्राप्तियां और प्यार होता है। जब उसने जन्म लिया और जिसके प्रति उसने कहा ये मेरे पिता हैं, और पिता ने कहा ये मेरा बच्चा है, ये बाप और बेटे का संबंध हुआ, तो उस संबंध से वो प्रॉपर्टी का हकदार हो गया। देखिए कितना बड़ा संबंध है, संबंध का महत्व कितना बड़ा है, संबंध की डिमांड और संबंध से जो प्राप्ति है, अटेनमेंट है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोर्ट में कोई रजिस्टर नहीं किया गया कोई एग्रीमेंट। उसने कहा ये मेरे पापा हैं, और उसने कहा ये मेरा मिचनू है, छोटा बच्चा, जिसको भी जैसे कहो, तो प्रॉपर्टी का हकदार हो गया। अगर वो करोड़पति का बेटा है तो करोड़पति हो गया। ओनली बाई सेइंग ही इज माई पापा एंड द पापा सेज ही इज माई स्वीट चाइल्ड, ये मेरा छोटा प्यारा बच्चा है, मेरा लाल है, मेरे नैनों का नूर है, मेरे घर का चिराग है, प्यार शुरू हो गया, संबंध शुरू हो गया, प्राप्ति शुरू हो गई, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य भी शुरू हो गया। बाप का बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति, जैसे जैसे बेटा बड़ा होगा, क्योंकि कर्तव्य और प्राप्ति ये दोनों दो पक्ष हैं एक ही चीज, एक ही कायन की दो साइड हैं, एक ही सिक्के के दो तरफ हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो संबंध के आधार पर सारा जीवन चलता है। मां के सामने जाता है कितना भी बड़ा हो, उसको जो प्यार है वो ममता का रूप होता है, मां की ममता का। और बच्चे का जो मां के प्रति भाव, उद्गार, स्नेह होता है, वो प्यार का दूसरा रूप होता है। बहन भाई का, भाई भाई का, बहन भाई का जो प्यार है उसका अलग रूप होता है। आप में से बहुतों ने हिस्ट्री में मुगल पीरियड पढ़ा होगा, अकबर का नाम सुना होगा। अकबर या कोई भी बादशाह जब दरबार में जाता है, आपने कोई नाटक भी देखा होगा या पढ़ा होगा, जब बादशाह दरबार में जाता है या कहीं भी सभा में, या तो उससे पहले ऐलान होता है, शहनशाह आलम है, कहते हैं ना, परवरदगार, अन्नदाता इत्यादि इत्यादि कई नाम बोले जाते हैं, बादशाह सलामत आते हैं। तो अदब है, उनके कोर्ट के एटिकेट्स होते हैं, राजा को कैसे रिसीव करना है, वो आता है तो लोगों को कैसे अदब में खड़ा होना है, बैठना है इत्यादि। लेकिन वही राजा अकबर, बादशाह आलम, शहनशाह आलम, जब घर में अपनी मां के सामने जाता था तो वो कहती थी, अकबरू तू आ गया, बेटा अकबरू आ गया। वो तो कहते थे बादशाह और शहनशाह आलम, और वो उसको अकबर भी नहीं कहती थी, अकबरू कहती। कहते हैं भाई, इस दुनिया में तीन नाम, परसु परसा परसा राम। जब छोटा बच्चा होता है मां कहती है परसु इधर आ, बड़ा होता है पढ़ने लगता है मैट्रिक में, वो चिढ़ता है कि मेरे दोस्तों के सामने तू परसु कहती है, कुछ चेंज कर, अपने आप को परिवर्तन कर। तो परसु छोड़कर कम से कम परसा तो कहने लग जाती है। जब उसका विवाह होता है, नौकरी लगती है, जरा बड़ा होता है, फिर परसाराम कहते हैं। बेटे वाला हो जाता है तो लाला परसाराम भी कहते हैं उसको, बदलते हैं। लेकिन उसकी मां कहती थी अकबरू तू आ गया। तो वो एक दफा उसने उसको कहा, मां मैं अब मेरा क्या स्थान है, लोग मुझे किस तरह से मेरे लिए पहले ऐलान करते हैं जाने से पहले, कम से कम लोग सुनेंगे तू मुझे अकबरू कहती है, कुछ तो ठीक तरह से कहा कर, और कुछ नहीं अकबर तो कह दिया कर। उसने कहा, ना भाई, मैं तो तुझे अकबरू ही कहा करूं, मैं तो तुझे अकबरू ही कहूंगी, प्यार से उसने कहा। और उसे वो अच्छा भी लगता था, बोला कि मुझे सबसे अच्छा यही लगता है जब मैं घर में आता हूं तुम्हारे सामने, तुम अकबरू कहती हो तो मुझे सारी दुनिया के दुख दर्द गम भूल कर वो मां का प्यार, जो रियल प्यार है, वो मेरे सामने आ जाता। तो मां का बेटे के साथ क्या प्यार है, वो बादशाह होगा, दूसरों के लिए बादशाह होगा, उसके लिए तो वही बेटा अकबरू है और वो दूसरों पर हुकूमत करता होगा, लेकिन मां के सामने तो एक छोटा बच्चा ही है जो मां कह दे उसको। तो उसका जो व्यवहार है, जब वो अपनी राज गद्दी पर बैठा है तो जो पब्लिक के साथ, प्रजा के साथ उसका संबंध है, वह है राजा और प्रजा का, तब उसका व्यवहार उस राजा और प्रजा के संबंध से चलता है। जब घर में आता है मां के सामने, तो मां और बेटे के संबंध से चलता है। तो कहने का भाव यह है कि सारा जीवन जो हमारे व्यवहार होता है, हमारा जो सारा कर्म विधान बना हुआ है, वो संबंधों के आधार से बना हुआ है। प्यार भी संबंधों के ही आधार से है। ये जब से संबंध बिगड़े हैं तब से ये संसार बिगड़ा है। जिन्हें हम विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो संबंधों का बिगाड़ है। जिसे आप विकार कहते हैं वो हिंदी और संस्कृत का शब्द है विकार। उर्दू में या हिंदुस्तानी में उसको कहते हैं बिगाड़, बिगड़ी हुई चीज। तो जो संबंधों का स्नेह बिगड़ जाता है उसको कहते हैं विकार, और जो वास्तविक शुद्ध स्वरूप है वो है प्यार। प्यार और विकार में इतना फर्क है। लोग आज सेक्स को लव समझते हैं, वो समझते हैं ये प्यार है, वो प्यार नहीं, हम कहते हैं वो विकार है। क्यों? क्योंकि वो असली शुद्ध निस्वार्थ रूहानी प्यार नहीं है, बिगड़ा हुआ प्यार है, प्यार का विकृत रूप। तो विकार क्या चीज है? वो संबंधों में जो प्यार होना चाहिए, जिस तरह से संबंध निभाए जाने चाहिए, वो उस तरह से ना होकर उसका बिगड़ा हुआ रूप है। उससे सारे समाज में बिगाड़ पैदा होता है, आपस में भी स्ट्रगल कश्मकश होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, दुख दर्द सामने आता है, जीवन में अनेक हमारी परिस्थितियों में संकट आते हैं। तो ये संबंध जो हमारे हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये सारी मुरली जो हम रोज प्रातः सुनते हैं ये क्या है? अगर आप उसको गहराई से देखें तो जो हमारे संबंध खराब हो गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि उनमें विकृति आ गई है, विकार आ गए हैं, उनको फिर से ठीक करने के लिए ये सारा ज्ञान है और ये योग है, ये दिव्य गुणों की धारणा है। और उनको ठीक करने की जो दूसरों को हम शिक्षा जो हमें मिली है, जब हम उनको देते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उसी का नाम सेवा है। ये हमारे चारों सब्जेक्ट ऐसे ही। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो निवृत्ति मार्ग का नहीं है। सन्यासी तो संबंधों को छोड़ देते हैं, प्यार को भी एक तरफ छोड़ देते हैं, जाके अकेले रहने लग जाते हैं। आज नहीं, आज तो उनका दूसरा ही लफड़ा है। पहले की बात बता रहा हूं, जब वो असली सन्यासी होते थे मस्त। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि ये निवृत्ति मार्ग नहीं है, संबंधों को छोड़ने का मार्ग नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन ये शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग है, दैवी प्रवृत्ति मार्ग है। जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारे संबंध हैं, हमारा प्यार है, उसको शुद्ध करना, शुद्धिकरण, उसका सबलाइनेशन जिसको कहा जाए, उसका मार्गांतरीकरण, उसका रीडायरेक्शन, उसका जो मार्ग है उसको बदलना। अभी गलत तरफ चल पड़ा है वो। तो ये जो संबंध हैं उनको भी आप देखेंगे कि संबंध के कई रूप होते हैं। आमतौर से लोग संबंधों को एक संकुचित अर्थ में लेते हैं, लेकिन संबंध संकुचित भी होते हैं, व्यापक भी होते हैं। आपको मालूम है, जिसे हम पिता कहते हैं, जिसके माँ बाप के कनेक्शन से हमारा जन्म हुआ, उसको हम पिता कहते हैं। लेकिन जो शहर का, नगर का जो मेयर होता है, उसको भी सिटी फादर कहते हैं, नगर पिता कहते हैं, कहते हैं ना। और जो सारे राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक है, उसको हम अपने देश का पिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, कहते हैं ना। जो धर्म स्थापन करता है उसको भी पिता कहते हैं, उसको धर्म पिता कहते हैं। भाई भाई हैं, और जो एक ही गुरु के शिष्य हों उनको भी गुरु भाई कहते हैं। एक ही गांव के कुछ लोग हों, कहते हैं जी हमारे गांव का भाई है। इस तरह से जो भाई बहन माता पिता, ये सारे जो शब्द हैं, ये जैसे हम माता शब्द गीता के लिए भी प्रयोग करते हैं, गंगा के लिए भी प्रयोग करते हैं, गऊ को भी लोग कहते हैं ये गऊ माता है। तो कोई ना कोई कारण से उसके एक पहलू को लेकर उसका प्रयोग दूसरे बातों में भी होता है। केवल ये देह के आधार पर संकुचित अर्थ में संबंध का प्रयोग नहीं होता, बल्कि व्यापक रूप में भी होता है। एक व्यक्ति फांसी पर लटकने को तैयार है, उसकी माँ बीमार है, उस वक्त उसकी जरूरत है घर में, उसको भी छोड़कर वो देश की आजादी के लिए लड़ रहा होता है, कहता है ये मेरी बड़ी माँ है, मेरी माँ की भी माँ है, जो हमारा देश है भारत माता उसको बोलते हैं, उसके लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। उसके लिए मेरी एक माँ की जान गई तो क्या हुआ, सारे देश की जो माता है हमारी उसके लिए। तो माता का व्यापक रूप, उसका जो एक विशाल रूप है, बृहद रूप, वो भी है। तो ये संकुचित अर्थ की बात नहीं है। तो इन संबंधों को अगर हम देखते हैं जो कि जीवन में महत्वपूर्ण है, जिनसे हमारा सारा व्यवहार, आचार, जो करैक्टर है, जिसको कहते हैं बैड करैक्टर है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है या इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार और आचार, बिहेवियर और करैक्टर, हमारा सारा कांडक्ट, हमारे जो दिन में चलने के, उठने बैठने की जो पद्धति है, वो सबका संबंध, उसका सबका जो जोड़ है वो संबंध से है। इस बात को अगर आप लेकर चलें कि अगर हमारे जो सारे संबंध हैं वो बिगड़ चुके हैं, हम जो कहते हैं हम पतित हो गए, पतित पावन भगवान को कहते हैं, भाई वो परमात्मा जो है वो पतितों को पावन करने वाला है। पतितों को पावन वो कैसे करता है? हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाता है जो बिगड़ चुके। और आपको ये मालूम रहे कि संबंधों के आधार पर भी हमारी दृष्टि और वृत्ति बनती है, और या यूं कह दीजिए कि हमारी वृत्ति और दृष्टि के आधार पर हमारे संबंध बनते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्शन है इनका, दृष्टि और वृत्ति। ये सारा जो योग हम सीखते हैं, ये हमारा आउटलुक और एटीट्यूड, हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए है। अगर व्यक्ति की दृष्टि और वृत्ति देही अभिमानी नहीं बनी, पवित्र नहीं हुई, दिव्य नहीं बनी, तो योगी नहीं बन सकता। और दृष्टि और वृत्ति का कनेक्शन है संबंध से, और अगर वो संबंध हमारा देह पर आधारित है, संकुचित अर्थ में है और विकृत है, देह अभिमान है, तो वो भोगी है, वो पतित है। और अगर वो रूहानी है, आत्मिक है, और अगर वो बेहद के दृष्टि और वृत्ति को लिए हुए, शुद्ध दृष्टि और वृत्ति को लिए हुए है, तब वो जो संबंध है वो श्रेष्ठ दैवी संबंध है। सतयुग में भी संबंध होते हैं, कलयुग में भी संबंध है, वहां भी स्नेह होता है। यहां जिसे लोग कहते हैं स्नेह, वो स्नेह कहते तो हैं, वो स्नेह वास्तविक स्नेह नहीं होता, उसका रूपांतर होके वो विकृत हो गए होते हैं। तो अब अगर हमें अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदल के योगी बनना है, तो जब तक स्नेह और संबंध को ठीक नहीं करोगे, तब तक योगी नहीं बन सकते। पवित्र बनो और राजयोगी बनो, ये हमारा नारा है। पवित्र बनो माना संबंधों में पवित्रता को लाओ, दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाओ, और योगी बनो माना संबंध अपने ठीक करो, सब संबंध आप परमात्मा से जोड़ो। योगी वो है जो सब संबंध तो उसके भी होते हैं, लेकिन वो सारे संबंध परमात्मा से जोड़ता है। क्योंकि जब तक आप परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ेंगे, दूसरों से कुछ न कुछ जुटे हुए होंगे, तब तक वो पवित्रता, शुद्धि, रूहानियत आएगी नहीं। और ये संबंध जो है यही बंधनकारी है। संबंध शब्द का मतलब क्या है? बंध, ये बंधन है। जब बच्चा आ गया उस घर में और जन्म ले लिया उसने, अब वो माता पिता के साथ उस नाते में बंध गया। माता पिता उस बच्चे के साथ जब तक वो जिंदा है, उनका कर्तव्य, उनका संबंध ऐसा हो गया कि उनको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जो कुछ है, लोग कहते हैं भाई आप माँ बाप हो, आपका फर्ज बनता है, आपका संबंध ही ऐसा है, आपको करना पड़ेगा। संबंध माना ही बंधन। तो हम मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर ये संबंध हमारे देहधारियों से रहे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? इन सब संबंधों से ऊंचे उठेंगे तब मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्ति होगी। मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति इन संबंधों को ठीक किए बिना या इनसे ऊपर उठे बिना नहीं हो सकती, ये समझ लीजिए। और वो मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, संबंधों से उठने के लिए कहां जाएंगे? संबंध तो इस संसार में रहते हैं तो रखना ही पड़ेगा, वो शुद्ध तो होंगे नहीं। फिर हिसाब किताब, कर्म का खाता बनता रहेगा। जब मनुष्यों के संपर्क में आकर हम कर्म करेंगे, कोई ना कोई संबंध तो जोड़ेंगे ना, जब संसार में रहेंगे। या तो जैसे सन्यासियों ने किया भाई भाग गए कायरों की तरह से जंगल में चले गए, वो तो कर्मों का खाता चुकता होगा नहीं। लेकिन अगर हमको ये समझ में आ गया कि संसार में रह के हमें योग द्वारा कर्मों का खाता चुकाना है, तो आप सोचिए कि उसको अगर हमने मुक्ति और जीवन मुक्ति में बदलना है, संबंधों को श्रेष्ठ बनाना है, तो वो जो मैंने बताया संबंध जो हैं वो संकुचित भी होते हैं, व्यापक भी होते हैं, लौकिक भी होते हैं, अलौकिक भी होते हैं। अब जैसे लौकिक का मतलब यह है भाई जो देह का पिता है उसके साथ लौकिक संबंध है, अब जो गुरु कहता है बेटा इधर आ और वो कहता है बाबा जी आता हूं, तो वो कोई उसका बाबा जी थोड़ी लगता है वास्तव में, और वो उसका बेटा थोड़ी लगता है। हो सकता है वो अपने बेटे को तो घर छोड़ आया है, आप दूसरा जो शिष्य बनाया है उसको बेटा कह रहा है, तो वो है तो नहीं उसका कनेक्शन। लेकिन अब बाप बेटे का, बाबा बेटे का संबंध हो गया ना, तो इसका मतलब यह है कि संबंध कोई सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता, बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता, जैसे मैंने कहा देश से, धर्म से और कई कारणों से भी संबंध होता है। तो जब हमारा संबंध परमात्मा से नहीं जुटेगा तब तक ये लौकिक संबंध हमारे शुद्ध नहीं होंगे, हम इसी में नैरो में पकड़े रहेंगे, ये बंधन में इस जाल में फंसे रहेंगे, तब हम मुक्ति और जीवन मुक्ति की कल्पना ही छोड़ दें, या तो छोड़ दो, यू कैन नॉट अटेन मुक्ति एंड जीवन मुक्ति, नहीं कर सकते जब तक के संबंध परमात्मा से नहीं जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए दृष्टि और वृत्ति को बदलना जरूरी है। अभी तक हमने देह की दृष्टि से संबंध जोड़े हुए हैं और उसी वृत्ति से हम व्यवहार करते हैं, और वो दृष्टि और वृत्ति बदल ही नहीं सकते जब तक हम देह से उठकर आत्मा में और आत्मा का जो संबंध परमात्मा से है उसमें ना आए। जब तक वो हमारी दृष्टि और वृत्ति ना बने और संबंध ना बने, तब तक ये संबंध लौकिक बने रहेंगे। और मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए आपको कोशिश करते रहिए कि तीव्र पुरुषार्थी बनो, फरिश्ता बनो, इत्यादि इत्यादि, इट इज ऑल विदाउट एनी मीनिंग, हो नहीं सकता। बताइए कोई आप में से कोई कहना चाहता हो कि नहीं बन सकता, देर इज नो अदर वे, एब्सोल्युटली नो वे, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे आप मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सको, जिससे आप फरिश्ता बन सको, यानी जिसको बाबा कहता है सब रिश्ते से ऊपर उठोगे तब फरिश्ता बनोगे, रिश्ते यानी संबंध, और संबंध माना प्यार, प्यार वो आपका देह का, और वो माना वही दृष्टि और वृत्ति। अगर दृष्टि और वृत्ति भी वही रही, संबंध भी वही रहा, स्नेह भी उसी तरह का रहा, बन चुके फरिश्ता कैसे बनोगे? हो सकता है? इम्पॉसिबल है। ये जो आप कह रहे हो भाई पानी को आग लग गई, वो किसी ने कहा ना भाई ये तीन पागल खड़े थे आपस में बात करने लगे, एक कहता है देखो भाई एक बात मैं सोच रहा हूं, आप भी मेरी मदद करो कोई हल निकालने का, अगर इस तालाब को आग लग जाए तो मछलियां कहां जाएंगी? अब पहले तो ये सोच रहा है कि तालाब को आग लग जाए, तालाब के पानी से तो आग बुझाते हैं, पानी तो आग को बुझाती है, और वो कहता है अगर तालाब को आग लग जाए तो जी। अब दूसरा समझदार आदमी था, वो भी उतना ही, वो भी पीएचडी था पागलपन में, उसने भी थीसिस किया हुआ था, वो कहता है भाई ये जैसे वृक्ष है ना, मैं समझता हूं इस पर चढ़ जाएंगी मछलियां, अब मछलियां जो है वृक्ष पर चढ़ जाएंगी, तालाब के किनारे पर एक वृक्ष था, कहता है क्या भाई ये कोई मुश्किल बात थोड़ी है, मैं बताता हूं अगर तालाब को आग लग जाएगी तो लगने दो, वो आ जाएगी मछलियां इस वृक्ष पर चढ़ जाएंगी, फिर क्या, वो उससे भी समझदार, तीसरा और उससे भी जरा दो रत्ती ऊपर ही था, वो कहता है अरे मछलियां हैं भाई, मछलियां कोई गाय भैंस थोड़ी है जो वृक्ष पर चढ़ जाएगी, इसका मतलब यह है गाय भैंस वृक्ष पर चढ़ती है चढ़ती है, वो उससे भी नहीं गुजरी बात कहता है। तो तीनों ही असंभव बात कह रहे हैं, आप तो नहीं कहीं ऐसा कहना चाहते कि फरिश्ते बन जाएंगे, संबंध बने रहे, दृष्टि वृत्ति वैसी बनी रहे, स्नेह वैसा ही बना रहे, और फिर फरिश्ते बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? जब बाबा कहता है तुम्हारा ही हड्डी मांस से तुम ऊपर उठ जाओगे, अभी तो थोड़ा पिल भी चुभता है तो आई की आवाज निकलती है, और हड्डी मांस ही हमारा ना हो, बिल्कुल हम फरिश्ते लाइट के बन जाएं, वो स्टेज तो ऊंची की रही। और अपनी हड्डी मांस को भूलने की बात तो अलग रही, दूसरों की हड्डी मांस से संबंध जोड़े हुए हमने, तो संबंध बंधन वाले जोड़े हुए हैं और बंधन मुक्त होना चाहते हैं। ये जो देह आधार पर आपने संकुचित अर्थ में जो संबंध जोड़े हुए हैं, ये तो आपके कर्म के खाते को बनाने वाले हैं और बंधन में लाने वाले हैं। उसी बंधन के कारण तो दुख पा रहे हैं सारे, ये जीवन बद्ध अवस्था है, ये तो बांधन की अवस्था है। और इससे मुक्त करने के लिए, जीवन मुक्ति देने के लिए वो पिता आए हैं, परम पिता, और उनसे हम चाहते हैं ये प्राप्त करना, वर्षा प्राप्त करना। वर्षा तो तब होगा जब हम उसके बच्चे बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे तब तो उससे वर्षा मिलेगा। उससे भी वर्षा प्राप्त करना चाहते हो, अपने इस लौकिक बाप से भी वर्षा प्राप्त करना चाहते हो, पड़ोसी के उसको बाबा जी कह के उसका भी वर्षा लेना शायद चाहते हो, बड़े होशियार हो। इट्स नॉट पॉसिबल जब तक उसके साथ सब संबंध नहीं जोड़ोगे। इसलिए बाबा ने योग की कई व्याख्याएं की हैं, लोगों ने जैसे कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। लेकिन बाबा ने क्या है, लगन में मगन होने का नाम योग है। बाबा ने अलग उसकी परिभाषाएं दी हुई है, लगन में मग्न होने का नाम योग है, है? ऐसे और भी समय समय पर बाबा ने बताई है। उनमें अधिक न जाकर आज का जो विषय है उसको लेते हुए बाबा ने ये कहा हुआ है, सब संबंध जोड़ना, योग माने जोड़, सबसे तोड़ एक संग जोड़, उस परमात्मा से सब संबंध जब जोड़ोगे उसी का नाम योग है। ये योग दूसरों के योग से विलक्षण है, भिन्न है, इट इज एब्सोल्यूटली डिफरेंट। वो कोई ना कोई कमल का फूल लेकर, कोई और चीज पर, कोई ज्योति पर, प्रकाश पर, कैंडल को जगाकर उसके फ्लेम पर मन को एकाग्र करने की कोशिश करते रहते हैं, आर्टिफिशियल। संबंध तो परमात्मा से जोड़े नहीं, प्राप्ति कैसे होगी? संबंध बदलेंगे कैसे, दृष्टिवृत्ति बदलेगी कैसे, स्नेह बदलेगा कैसे, उसका शुद्धिकरण होगा कैसे, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी कैसे? इट इज इम्पॉसिबल। तो ये सब संबंध उस एक परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। तो पवित्र बनो और योगी बनो, कहने को तो दो शब्द हैं, लेकिन योगी बनने का कितना गहरा अर्थ है उसका अगर स्पष्ट करो व्यवहार, उसका विस्तार करो, तो सब संबंध परमात्मा से जोड़ना ही योग है। फिर मन कहाँ जाएगा? अभी जो लोग कहते हैं योग में बैठते हैं बिंदु रूप अवस्था का अनुभव होता नहीं, और उस बिंदु से संबंध जोड़ा ही नहीं, स्नेह हुआ ही नहीं, लगन हुई ही नहीं, तो मगन कहाँ होगे? लगन में मगन होना ही योग है। अगर लगन ही नहीं तो मगन कहाँ होगे? पहले लगन राम बनोगे फिर मगन राम बनोगे, लगन ही नहीं होगी तो पहले वो चाहिए। इसलिए वो लव जो है सारी इकट्ठी होके, जो शिव बाबा के प्रति हमारी उसका चैनल होगा, उसका डायरेक्शन होगा, उधर वो जाएगी, तब हमारा मन एकाग्र होगा। एकाग्र माना एक में टिकना, उस एक में तभी टिकेगा जब सब तरफ से उधर से मोड़कर उधर जोड़ा जाएगा। तो ये सब संबंधों के समझने की बात है। और आप देखेंगे कि संबंध जो हैं उनके कुछ घनिष्ठता की, जो आप कहते हैं ना, कई कहते हैं परमात्मा से हम चाहते तो हैं हमारा प्यार जुटे, लेकिन जुटता नहीं है। गीता में भी यही है, हे भगवान मैं चाहता तो हूं कि मेरा मन लगे, लगता नहीं, ये वायु के समान चंचल है, ये एकाग्र होता नहीं, ये कैसे एकाग्र हो? तो एकाग्र होता नहीं क्योंकि लव होती नहीं, एक से जुटती नहीं, और लव होती नहीं तो लव कैसे हो? और दूसरा, वो जो संबंध की बात मैंने बताई, उस संबंध में उसके कई एलिमेंट्स, कई कंस्टिट्यूएंट्स, उसके कई भाग हैं। लव जो संबंध है, संबंध से जुड़ी हुई कई आवश्यक बातें हैं, कारक हैं, उसके फैक्टर्स हैं, वो ना हो तो संबंध ठीक होते नहीं, उनमें घनिष्ठता होती नहीं, उनमें स्निग्धता होती नहीं, इसलिए उनका पहले ख्याल रखना जरूरी है। आप देखेंगे कि जहां संबंध बिगड़ जाते हैं या दूरी बढ़ जाती है या ठीक रीत से नहीं चलते, उनमें हार्मनी नहीं रहती संबंधों में, उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है या जो कुछ भी, तो उसमें संबंध में कुछ खास बातें हैं वो आप पहले ध्यान में रखें। एक तो है लव, पहले तो संबंध, वहां संबंध माना ही स्नेह, स्नेह नहीं तो संबंध नहीं। अब वो स्नेह कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऊपरी ऊपरी भी हो सकता है, घनिष्ठ गहरा भी हो सकता है, थोड़े समय का टेम्पोरेरी भी हो सकता है, जीवन पर्यंत भी हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन लव या स्नेह वो संबंध का एक आवश्यक आधार है, तब उससे संबंध निभा पाते हैं। अगर वो नहीं है तो मनुष्य कहने लगता है मेरा इससे क्या कनेक्शन है, मेरा इससे क्या संबंध है। अरे भाई, वो निभाना ठीक तरह से, वक्त पर धोखा दे देता है कोई तो हम कहते हैं भाई ये आदमी डिपेंडेबल नहीं है, ये आज कहता कुछ है और जब मौका आता है तो हमने देखा ही खिसक जाता, फिर आएगा फिर जाएगा, नहीं नहीं मैं तो वही हूं, मैं तो ये था वो था, एक्सप्लेनेशन देगा, बहाने बनाएगा, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये ऐसा ही आदमी, ये चलता राम आया राम गया राम आदमी है, ये हमारे साथ टिकने वाला नहीं है। तो लॉयल्टी या फेथफुलनेस, वफादारी जिसको कहना चाहिए, वो जब तक ना हो, और फिर साथ साथ आप देखेंगे सिंसियरिटी, सच्चाई सफाई से अगर मन के जो रियल बात है नहीं हम करते, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों चाहे वो हमारे माता पिता हों, अगर हम बात ठीक तरीके से फैक्ट नहीं बताते, मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं, उनके साथ जिसको चालाकी कहते हैं, ऐसी चालाकी जो ठीक नहीं, जो छिपाते हैं, चोरी करते हैं या धोखा देते हैं उनको एक प्रकार से, तो वो सिंसियरिटी नहीं जिसमें, वो संबंधों में भी जो है वो चलते नहीं, उसमें भी जो गहराई है वो होती नहीं। इसके साथ साथ है कमिटमेंट, जिसके साथ जो हमारे संबंध हैं उसमें कोई कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट माना जो पिता है, जब उसने कहा ये मेरा बच्चा है तो वो कमिट कर दिया उसने, ये उसने अपने मन में धारण कर लिया कि ये मेरा बच्चा है, इसके दुख सुख में, इसकी बीमारी सिमारी में, इसके लिखाना पढ़ना खाना पीना, इसको आगे बढ़ाना, इसकी शिक्षा देना, ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा कर्तव्य है, वो उसने अपना फर्ज समझ लिया, वो चलाता है उसको। फिर अगर वो ये कार्य करता नहीं है तो फिर वो पिता का कर्तव्य निभाता नहीं है, वो सम्मान टिकता नहीं है, उसमें कमिटमेंट चाहिए। ऐसे ही बच्चा है तो वो भी कमिट करता है, भाई ये मेरे पिताजी हैं, इनकी रेस्पेक्ट करना, इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना। जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं फिर उनको अपना जो भी मेरे से हो सकता है पूरी कोशिश करके उनकी संभाल करना, ये होता है ना। दोनों तरफ से अगर कमिटमेंट नहीं होता है फॉलो, तो वो भी ठीक तरह से चलता नहीं है। तो ये कई चीजें हैं, इसी तरह से एडजस्टमेंट, अगर संबंधों में हम एडजस्ट नहीं करते हैं, सेक्रीफाइस कई जगह करना पड़ता है एडजस्टमेंट में भी, तो अगर एडजस्ट नहीं करते हैं तो भी संबंध पूरी तरह से वो हमारे चलते नहीं है। ये जब संसार में हम रहते हैं, विचार कहीं नहीं मिलते या एक मत सबके नहीं होते, दूसरे की इच्छा कुछ और होती है, पति पत्नी का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो छोड़ दो, इसका विचार ऐसा है, कोई बात नहीं करने दो। जहां पर उसकी सुरक्षा बनी रहे, उसका स्वास्थ्य बना रहे, उसका कल्याण बना रहे, तो फिर अगर कोई फर्क थोड़ा सा किसी बात में होता है तो उसमें एडजस्ट कर लिया जाता है, आपस में एक दूसरे को छूट दे दी जाती है। नहीं तो डोमिनेट करने वाला कोई हो, आप किसी के साथ रहें, हमेशा अपनी बात की जिद करे, अपनी बात ही मनवाए, डोमिनेट करे,
तो आप झटके से कहेंगे जी मैं इसके साथ नहीं हूं, मैंने कोई इसकी गुलामी नहीं करनी। ये क्या है, कब तक हम इसका, ये क्या समझते हैं अपने आप? उसमें ये होता है भाई आपस में कुछ आपकी बात वो माने, उनकी बात आप माने, एडजस्ट करें, तो संबंध इसी तरह से चलते हैं एडजस्ट करने के लिए होता है। और फिर लेन देन संबंध तो है, अब कोई एक अमेरिका रहता है दूसरा इंडिया में रहता है, ना कोई पत्र का लेन देन, ना कोई टेलीफोन का लेन देन, ना कोई बर्थडे कार्ड का लेन देन, ना कोई गिफ्ट का लेन देन, ना कोई आना जाना, कोई कनेक्शन ही नहीं। तो कितना भी गहरा संबंध था, एक बाप के बेटे दोनों भाई इकट्ठे रहे, अब वो उधर चला गया, वो उधर चला गया, धीरे धीरे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसे कहा जाता है, नजर से दूर तो दिल से भी दूर, धीरे धीरे वो कनेक्शन ना रहने से वो भी संबंध खत्म हो जाते हैं। तो ये जो लेन देन आना जाना संपर्क सब जिसको कहते हैं संपर्क संबंध, संबंध में संपर्क ये भी जरूरी है। संपर्क ना बना रहे, आप किसी के पास जाते हैं एक साल राखी बांधते हैं फिर दूसरे साल बांधते हैं ना ताकि बना रहे, या कोई फंक्शन होता है उसको कार्ड भेजते हैं ना, लिस्ट बनाकर रखते हैं ताकि संपर्क बना रहे, तभी तो वो आता जाता रहेगा। और उससे क्या होगा, लेन देन होगा, वो कोई ईश्वरी सेवा में सहयोगी होगा, आप भी जो ज्ञान का लेन देन है उससे कर सकेंगे, वो भी ईश्वरी सेवा में एक सहयोगी होकर आगे बढ़ सकेगा, तो दैवी परिवार का संबंध उसका जुटेगा, नजदीक आएगा, बाबा के साथ उसका संबंध बनेगा। तो बिना संपर्क के कॉन्टेक्ट अगर ना बना रहे तो वो भी संबंध खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ मौलिक इसमें से मैंने आपको बताई। तो अब इन चीजों को देख लीजिए कि अगर हम ये चीजें परमात्मा के साथ शिव बाबा के साथ भी हमारी अगर ये नहीं होती तो हमारा संबंध टिकता नहीं है, गहरा होता नहीं। अब जिसका जितना ये सब संबंध है उसमें जितनी ये बातें हैं, पहले तो लव, शिव बाबा से हमारा कितना लव है, और जैसे मैंने कहा लॉयल्टी, कितना हम उसके फेथफुल हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसमें ओबीडियंस की जरूरत होती है, फर्मा बरदार आज्ञाकारी, जैसे गुरु शिष्य का संबंध, टीचर और स्टूडेंट का संबंध, बाप और बेटे का संबंध, कमांडर और सैनिक का संबंध। कुछ संबंध ऐसे होते हैं ऑफिस में जो है कार्य अधिकारी और उसके सबॉर्डिनेट का संबंध जो उसके अंतर्गत काम करता है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसमें ओबीडियंस आज्ञाकारी भी वो तब होता है तब जब संबंध निभता है। तो शिव बाबा के साथ जो हमारे संबंध हैं, अगर उनमें ये बातें नहीं होंगी जो मैंने थोड़ी सी आपको बताई, उसको आप चेक करें। आप जिसको हम कहते हैं भी श्रीमत का फॉलो करते हो तो मतलब ओबीडियंट कितने हो, फेथफुल कितने हो, उसकी आज्ञा का पालन कितना करते हो, तो उसका लव तभी आपके प्रति होगा ना। जब आप फर्मा बरदार होंगे, आज्ञा का पालन करेंगे और वफादार होंगे, रोज रोज ही अगर आपका निश्चय अलटता पलटता रहता है, कभी आप कुछ माने बैठे हैं और कभी दूसरे के बहकावे में आकर कुछ और मानते हैं, तो क्या फेथफुलनेस हुई, क्या आपका निश्चय हुआ, क्या संबंध हुआ, नहीं होता है ना। तो आपको उसका लव कैसे मिलेगा, वो जो प्रभु प्यार गीत में कह रहा था, वो प्रभु प्यार कैसे मिलेगा, उसकी एक किरण भी अगर हमारे मन पर पड़ जाए, वो कितनी गोल्डन है, कितनी परिवर्तनकारी है, जीवन में कैसे नई जागृति लेती है, कितने नए अनुभव कराती है, उसका अनुभव कैसे होगा कि प्रभु का प्यार क्या चीज होती है। संसार का ही प्यार पाया है और देखा है कि लोग कितने स्वार्थी हैं, धोखा देते हैं वक्त पर, पहले कुछ कहते हैं और जब वो चीज अपनी ले लेते हैं उसके बाद वो मुंह ही मोड़ लेते हैं, उनकी आंखें ही बदल जाती है, निगाह ही बदल जाती है, अपना काम हुआ और धक्का देकर हट जाते हैं। एक तरफ अपने साथ देखा होगा, दूसरों के अनुभव सुने होंगे, संसार में ऑब्जर्व किया होगा, जब मनुष्य के संबंध और व्यवहार, उसका दृष्टिकोण, उसकी वृत्ति ऐसी है, तो क्या हम नहीं समझते कि हमें ये सब संबंध परमात्मा के साथ, एक शिव बाबा के साथ जोड़ने की जरूरत है। और उसके साथ जोड़ने के लिए ये लव, लॉयल्टी, कॉन्टेक्ट, कमिटमेंट, क्योंकि मम्मा कई दफा मुरली चलाती थी, कहते हो ना वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो समझदार हो, गृहस्थ में रहते हो, बाप का बेटों के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटों का बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, फिर कर्तव्य निभाते हो उस बाप के प्रति, ये कर्तव्य निभाते हो। बच्चा तो बाप के आगे पूरा पोता मेल लगता है, उसको पूरा अहवाल देता है, समाचार देता है, अपने जीवन उसके सामने खोल कर रख देता है और जैसे वो आज्ञा देता है वैसे चलता है। और आप अपने को उसका बच्चा कहते हो तो बच्चे का क्या कर्तव्य होता है इस संबंध में, फिर वो जानते हो, वो करते हो, वो करते नहीं हो। और सिर्फ ये कहना कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो ये तो सिर्फ निरर्थक हो जाता है, उसके कहने का नहीं रहता। तो ये जितनी बातें हमने बताई हर एक संबंध पर लागू कीजिए। और फिर जितने हमारे संबंध हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई और सब संबंध तोड़कर, यानी उनको रूहानी तरीके से उसको निभाते हुए एक शिव बाबा के साथ अब हमारे सब संबंध हों आत्मा के, परमात्मा के संत, इसी का नाम योग है। तो वो सब संबंध कैसे जोड़ने हैं, उसमें से भी सारे संबंधों में भी जो माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, सखा, सहायक, स्वामी और उसके साथ साथ बच्चा, अभी भी पिछले दिनों मुरली में ये था कि शिव बाबा को बच्चा बनाया है या उसको बच्चे के रूप में अपनाया है। और उसमें से भी कुछ, चूंकि हम लोग देह अभिमानी हैं, जन्म जन्मांतर के अपराधी हैं, पाप किए हुए हैं, देह अभिमान की दृष्टि से चलते रहे हैं, जीवन जीते रहे हैं, तो देखा गया है ऐसे कि कुछ टेंडेंसीज, जो झुकाव है, लगाव है मन का, वो महिलाओं का, बहनों का, लेडीज का जिसको कहा जाए, और जो भाइयों का, उनका थोड़ा सा कुछ डिफरेंस भी होता है, कुछ कॉमन भी होता है। अब जैसे आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति में ये कामना होती है कि मेरे पुत्र हो, संतान हो। और आपने, आपको मालूम है जब कोई यहां आने लगता है तो उसके माँ बाप भी जिद करते हैं, शादी कर लो, उसके बाद तुम जो भी हो, एक एक दो बच्चे पैदा होने चाहिए, हम अपने पोते पोती को देखना चाहते, ऐसे बोलते हैं। तो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई सारी उम्र हमने क्या करना है, हमें ये सोचना चाहिए। तो ये मनुष्य में, जो पुराने जमाने में किसी का बच्चा पैदा नहीं होता तो भाई उसके लिए यज्ञ करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं बच्चा पैदा हो, या कि आज भी ये रिवाज है, कहावत है, जिसका बेटा नहीं है उसका संस्कार कैसे होगा, अंत में उसको जब लिटाया जाएगा वहां पर उसका अंतिम संस्कार होगा तो उसका दाह कर्म संस्कार जो होगा तो अग्नि कौन प्रज्वलित करेगा, वो उसके बिना स्वर्ग में कैसे जाएगी, यहां तक समझते हैं लोग। तो बेटा होना, पुत्र होना जरूरी है, पुत्र शब्द का मतलब ही ये है और पुत्री शब्द का मतलब ही ये है। संस्कृत में जो पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द का मतलब यह है जो स्वर्ग में ले जाने वाला हो। तो वो स्वर्ग में कैसे ले जाएगा, क्योंकि आग लगाने से स्वर्ग में ले जाएगा, बताइए, आग लगा दी और वो भी शव को, उसके शरीर को राख बन गई वो, और वो चली गई स्वर्ग में, वो चला गया स्वर्ग में, तो समझ नहीं लोगों को। लेकिन ऐसा वो समझते हैं भाई बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, घर का चिराग कौन बनेगा, सूना सूना होगा। तो ये मनुष्य की एक इच्छा रहती है कि कोई बेटा, कोई संतान, जो बुढ़ापे में आए दिन जब जरूरत पड़े, कोई केयर टेकर तो चाहिए जो ध्यान दे, उसका संबंध होगा तो निभाएगा, दूसरे लोग छोड़ जाएंगे शायद पीछा, तो एक वो समझते हैं होना चाहिए। दूसरा जो मैं ये कह रहा था, ये तो भाइयों और बहनों, पुरुषों और नारियों, मेल्स और फीमेल्स, दोनों में एक टेंडेंसी है, खास करके जो पाश्चात्य देशों ने जो प्रचार किए हैं, उनके मनोवैज्ञानिकों ने, उन्होंने इंसान की बुद्धि में ये गलत ख्याल बिठा दिए हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है। और विषय विकार वाला संसार तो है ही देह अभिमानी, तो ये मनुष्य की इच्छा बनी रहती है। इच्छा ये प्रकट रूप में भी हो सकती है, गुप्त रूप में भी हो सकती है। गुप्त रूप में हाव भाव में मेल्स के प्रति मिलना जुलना, किसी बहन का, उससे बातचीत करना, छिप लुक के खिलाना पिलाना, उसको दिल का हाल बताना, इत्यादि इत्यादि, जैसे पति पत्नी का संबंध हो, जो एक टेंडेंसीज हैं वो टेंडेंसीज रह जाती है। तो वो जो दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन हो, संबंध का परिवर्तन हो, जो हमने कहा शुरू में कि संबंध ही धुरी है मनुष्य के व्यवहार की और उससे ही उसके दृष्टि और वृत्ति जुड़े हुए हैं, तो उसका जीवन में परिवर्तन जो हम कहते हैं भाई ये समय परिवर्तन का है, वो कैसे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। उसकी वो टेंडेंसीज होती रहेंगी, जो उनकी इंचार्ज बहनें हैं वो भी कहती रहेंगी कि इसका ये संस्कार है, ये क्लास के जो भाई लोग हैं उनसे अलग अलग खड़े होकर बात करती, पता नहीं क्या बात करती है, पूछते हैं तो कहती कोई बात नहीं, मैं तो उसको सेवा बता रही थी, वो एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ज्ञान का, उसका वो स्पष्ट कर रही थी, और वो इसी से ही पूछता है, इसको ही समाचार देता है, हमसे बताता नहीं, ये भी बताती नहीं। तो कारण क्या होता है कि वो जो छिपा हुआ एक चोर है अंदर, संस्कार जन्म जन्मांतर का जो कनेक्शंस हैं, ये डिसाइड कर लिया कि मैरिज नहीं करनी, पति पत्नी संबंध हमने नहीं करना, शुद्ध रहना है। वो भी है, वो भी प्रधान है, बना हुआ है साथ साथ, लेकिन साथ साथ सूक्ष्म रूप में वो जो पुराने संस्कार हैं, मेल्स से कनेक्शन रखना, बॉयफ्रेंड बनाना, या बॉय से बातें करना, या वो बॉय गर्ल से बातें करना, आपस में एक दूसरे को दिल का हाल लेना देना, जो पति पत्नी के बीच में होती हैं कई चीजें आपस में, तो वो उस तरह का व्यवहार किसी न किसी रूप में, आना जाना, जो कुछ भी राय सलाह वगैरह वगैरह, वो चलता रहेगा। अब कोई भी इंचार्ज है वो किसी को मना तो नहीं करती, अगर कोई बहन क्लास में मुरली सुनाती है, उसमें भाई भी होते हैं, उसके लिए मना थोड़ी है, या कोई जिज्ञासु आता है उसको 1 वीक कोर्स कराते हैं आप, उसके लिए कोई टीचर मना थोड़ी करती है, बात करने के लिए मना थोड़ी करती है। वैसे ही कोई सेवा आपको देती है और आपको कहती है कि उस भाई से कराना, तो मना थोड़ी करती है, खुद ही कह रही है। लेकिन ये अलग से बात करना और दिल का हालचाल बताना, राय सलाह करना, खोलना, इतनी घनिष्ठता उसमें लाना, चाहे वो प्रारंभ में उसका रूप कोई ऐसा विकृत ना हो, ये हो कि भाई हमारी दृष्टि तो आत्मिक है, सहयोगी है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जाल में फंस रहे हैं, दोनों एक दूसरे के जाल में फंस रहे हैं। संबंध जैसे मैंने कहा भाई बंध, ये पाश है, ये एक जाल है, ये डोरे हैं, कहते हैं ना प्रेम के डोरे हैं, ये रस्सियां हैं जिनमें हम बांध रहे हैं अपने आप को, बांधते 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 बांधते, जैसे वो कई दफा दिखाते हैं ड्रामा में भाई रावण की सेना कैसे वो खींच के अपने डोरे पे बांध के ले जाती है, उस दलदल में फंस जाते हैं। तो वो जो संस्कार है वो पति पत्नी का या बेटे की इच्छा का, पुत्र की संतान की उत्पत्ति का, कई लोग कहते हैं कि ये बहनें पवित्र रहती हैं, शुद्ध रहती हैं, योग अभ्यास करती हैं, महान हैं, इनके जीवन में बहुत अच्छी धारणा है, लेकिन जब कोई बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसे खेलती हैं, ऐसे बातचीत करती हैं, उनको गोद में लेके ऐसा उनके साथ वो करती हैं जैसे इनको बेटे की इच्छा हो। तो जो आजकल के लोग हैं वो इन चीजों को इस तरह से देखकर कई कमेंट किए बिना नहीं रहते कि ये जो बहन है इसके संस्कार में पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हुआ। छोटे बच्चे हर एक को प्यारे लगते हैं, मासूम होते हैं, और वो अगर किसी के बच्चे को आप प्यार करते हैं तो वो सारा परिवार ही ज्ञान में आता है, क्योंकि उनका बच्चों के साथ प्यार है, तो आप तो इसलिए करते हैं कि भाई वो ज्ञान में आते रहेंगे, वो बच्चा ही उनको ले आएगा, चलो दीदी से मिलाओ हमको, वो आएगा तो ये भी स्वाभाविक है वो आएंगे, तो वो भावना यही होती है। लेकिन उसमें जो मिक्सचर हो थोड़ा सा, पुत्र देखने की जो मन में एक चाह हो, या पति पत्नी के संबंध की जो इच्छा मन में सूक्ष्म रूप से मन के किसी कोने में छिपी हुई रही हुई हो, वो रही हुई अगर होगी तो वो मेल फीमेल के संबंध में किसी न किसी प्रकार से, या बच्चों के प्रति किसी न किसी प्रकार से वो निकलेगी। तो सावधानियां जो दी जाती हैं, जो नियम मर्यादाएं बनाए जाते हैं, क्योंकि योग का मार्ग है, तलवार की धार है, कहते हैं भाई योगी के मार्ग पर चलना, बैलेंस है, जैसे एक नट चलता है रस्सी पर एक स्थान से एक लाठी की दूसरी तरफ गिरना जाए, बैलेंस रखे वो, तो बैलेंस रखना पड़ता है। उसमें जो ये दृष्टि वृत्ति और संबंध की बातें हैं, ये तब सब खत्म हो सकती है एक धक से, अगर हम ये सब संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं। ये आप समझ लीजिए कि एज ए टीचर आप सक्सेसफुल तब होंगे, एज ए स्टूडेंट, एज ए योगी तभी सक्सेसफुल होंगे, एज सर्विस करने में भी तभी सक्सेसफुल होंगे, और ये सब बातें तो एक तरफ रख दीजिए, जीवन में ही तभी सक्सेसफुल होंगे। योगी जीवन में, योगी जीवन का मतलब यह है योग का आनंद, अति इंद्रिय सुख। पहले जब हम शुरू शुरू में साकार बाबा के दिनों में एक गीत बजता था, मेरा अंग अंग मुस्काए, मेरा अंग अंग मुस्काए, वो अति इंद्रिय सुख हमें मिले, हमें इंद्रियां आकर्षित ना करें, बल्कि ऐसी खुमारियां हो, ऐसा हम झूम जाएं, ऐसा हमारा मन नाच उठे कि हमारा जो, जैसे मीरा की हम मिसाल देते हैं, गोपिकाओं की हम मिसाल देते हैं, जो कि रियल में हम हैं। बाबा कहते हैं सच्ची मीराएं आप हैं, जिन गोपियों का भागवत में वर्णन है वो वास्तव में गोपियां आप हैं, ये वही जमाना चल रहा है। तो वो स्थिति बिल्कुल उपराम जिसको कहते हैं हम पूर्ण रूप से, तभी हो सकती है जब हम सब संबंध शिव बाबा से जोड़े। उसको जब तक बच्चा नहीं बनाया है, उसको जब तक पति रूप में स्वीकार नहीं किया है, उसको जब तक सखा नहीं बनाया है, टीचर तो है ही, उसका वो संबंध जोड़ना इतना कठिन आपको नहीं लगेगा। वो सदगुरु भी है ही, रोज हम मुरली उससे सुनते हैं, उसी ने हमारे जीवन को बदला है, वो ज्ञान योग की धारणा करा के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की मार्ग दिखा रहा है, वो प्रैक्टिकल में वो भी आपको कठिन लगेगा नहीं, वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। लेकिन एक वो हमारा कमांडर है, हम उसके सैनिक हैं, ये शिव शक्ति सैनिक है, उसका ओबीडियंट होना, उसके हुक्म पर चलना। हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो उसमें अंग्रेजी में एक कविता थी, और उस कविता के सुनाते हुए एक वो कविता थी, द चार्ज ऑफ द फायर, द चार्ज ऑफ द फायर ब्रिगेड, ऐसा चार्ज ऑफ द नाइट ब्रिगेड, लाइट ब्रिगेड। तो वो क्या था कि एक देश की सेना की दूसरी देश की सेना के साथ आपस में झड़प हुई, लड़ाई हुई, आमना सामना हुआ। तो एक देश की जो फौज थी उसके पास तोपें थी, और दूसरा जो देश था उसके जो सैनिक थे उनके पास तोपें नहीं थी, सिर्फ बंदूकें थी या रिवाल्वर थे या कुछ कम पावरफुल वेपन्स उनके पास थे, संख्या भी उनकी कम थी, और 600 की संख्या थी जबकि वो ज्यादा संख्या में थे। तो कमांडर ने उनको हुक्म दे दिया कि आप इन पर हमला कर दो। तो वो सैनिक आपस में कुछ एक बोलने लगे कि ये गलत ऑर्डर हुआ है, क्योंकि इस वक्त तो हमें भागकर छिप जाना चाहिए, अगर हम जिंदा रहेंगे तो फिर कभी इनसे लड़ेंगे जब हमारे हाथ मजबूत होंगे, अब हम इनसे मरेंगे, तोपों के सामने जाएंगे बिल्कुल मरेंगे, बचेंगे तो नहीं, तो लड़ने का फायदा ही क्या है, जिस लड़ाई में हम मच्छरों की तरह से सब मर जाएं, मृत्यु हमारी निश्चित हो, उसके लड़ने का फायदा क्या है। लेकिन उसमें वो कवि कहता है कि देयर इज नॉट टू, वो उनकी जो तोपें थी राइट लेफ्ट और सब तरफ थी सिवाय एक तरफ छोड़ के, कहते हैं कैनन्स इन राइट ऑफ देम, कैनन्स टू इन लेफ्ट ऑफ देम, कैनन्स इन फ्रंट ऑफ देम, रोड 600 इन टू द वैली ऑफ डेथ। दाएं तरफ भी तोपें थी, बाएं तरफ भी तोपें थी, सामने भी तोपें थी, और वो 600 जो थे वो समझ रहे थे कि अब हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो उनमें से एक सैनिक उनको कहता है, देखो ये कमांडर का हुक्म है, हम सैनिक हैं, हमारा जीवन इसलिए है कि देश के लिए हम अपनी जान दे दें। अब इस वक्त ये प्रश्न नहीं उठता है कि हमें गलत मिला है ऑर्डर या सही मिला है, कमांडर का हुक्म कमांडर का हुक्म है, उसके लिए हमें जान भी दे देने की जरूरत है। सैनिक उसको कहते हैं, उसका ये डिसिप्लिन होता है। तो वो किया उन्होंने, और वो कहते हैं कि भाई आखिर में उनकी विजय हुई, वो गए और उन्होंने तोपों के मुंह जो है वो मोड़ दिए उस फौज की तरफ, और आखिर वो जीत गए। तो वो हमें जब पोएम पढ़ा रहे थे हमारे क्लास में, अंग्रेजी के हमारे टीचर जो स्कूल के स्वयं हेडमास्टर थे, उन्होंने हमें अपनी एक बात बताई। वो ये कहने लगे, उन दिनों सेकंड वर्ल्ड वार अभी अभी चल रही थी या खत्म होने वाली थी, तो एक वहां पर एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट पर जहाज उतरा था, और वो जहाज जो था उसमें गोला बारूद लड़ाई का सामान हथियार आए हुए थे और वो क्योंकि ऐसी चीज थी दुश्मन भी लोगों के जो खुफिया एजेंट हैं वो घूम रहे थे जापान के जर्मनी के और लोगों के तो वो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ जो सैनिक थे वहां पर वो बंदूकें लेके खड़े हुए थे उनको ये हुक्म था कि कोई इसके नजदीक अजनबी आदमी जिसको आप ना पहचानते हो जो आपकी सेना का ना हो वो नहीं आ सकता नहीं तो उसको शूट कर देना तो वो खड़े हुए थे तो एक व्यक्ति जो वहां खड़ा था सैनिक रक्षा के लिए उसको उसके बाप को पता लगा कि मेरा बेटा आजकल यहां आया हुआ है क्योंकि सेना में तो कभी कहीं भेजते हैं कभी कहीं भेजते हैं तो वो उसने देखा कि भाई ये मौका है मैं उससे मिलाऊं किसी ने उसको कहा वो आजकल एयरपोर्ट में है और वहीं वो काम कर रहा है सेना में आया हुआ है वो बेचारा सुबह सुबह अमृत वेले उठ के भाग के एयरपोर्ट पर चला गया देखा उसने दूर से अभी सूर्योदय होने वाला था हो रहा था उसको दिखाई दिया और उसने पहचाना ये मेरा बेटा है खड़ा है तो और खुश हुआ बहुत तेज रफ्तारी से उसके प्रति भागा अपने बेटे से मिलने के लिए अब उनको तो हुक्म था कि कोई भी आदमी जो सेना का ना हो वो नहीं आ सकता तो वो इंग्लिश टीचर हमें बता रहा था कि उनका एक नियम होता है उनका हर एक दिन का एक वॉच वर्ड होता है वो एक एक दिन बदलते रहते हैं जैसे मान लो आज का वॉच वर्ड होगा लोटस तो वो अगर दूर से आ रहा है हु आर यू कहेगा लोटस उसका मतलब भाई वो जानता है आज हमारा वॉच वर्ड क्या है अच्छा वो आने देगा जो नहीं बोल सकता समझो हमारा आदमी नहीं उसको पता ही नहीं आज हमारा वॉच वर्ड क्या है तो उनके इस तरह के नियम होते हैं वो जो उसका बाप सामने भागता हुआ आ रहा था उस लड़के ने भी पहचाना ये मेरा फादर है और बाप ने भी बड़ा खुश हुआ कि ये मेरा लड़का है तो उसने जोर से कहा जैसे वो पांव बजा के बूट पहने हुए होते हैं और अपना बंदूक को ऐसे करके उसको कहता है हु कम्स हियर हार्ट कौन आ रहा है रुको यहां पर तो उसको आवाज से और पहचान आ गई ये मेरा ही बेटा है वो अंग्रेजी तो समझता नहीं था जाट आदमी था गांव का उसने सोचा कि ये मेरा ये बेटा खुश हो रहा है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं और ही बंदूक से सलामी कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है तो और तेजी से भागा बेचारा मिलने के लिए उसका फासला होता है इतने फासले कर कहो फिर इतने फासले इसके बाद अगर फासले में आ जाता है तो शूट कर लो कोई भी हो वो आगा आ रहा है भागा हुआ फिर उसको कहता है हु कम्स हियर हार्ट जोर से उसने कहा पागल आदमी वो भी हिंदी में बोल देता कुछ पता नहीं उसने भी अंग्रेजी पढ़ रखी थी उसको बोलता है जो उसको बताया गया था तो वो फिर आप भागा हुआ आ रहा है तीसरी दफा फिर बोला हु कम्स हियर हार्ट और नहीं रुका वो नजदीक आने लगा उसने शूट कर दिया बाप को शूट कर दिया मर गया बेचारा मिला क्या उसने वो तो खत्म हो गया वो मर गया सारे जो और सैनिक है भागे भागे आए कोई शायद दुश्मन आया है गोली चली है कुछ बात है जाके देखना चाहिए भाई क्या बात है कहता है जी क्या बताऊं दिल बड़ा दुखी है और एक बात मन में और भी है क्या भाई क्या दुखी है कहता है ये मेरे पिताजी थे तुमने इसको मारा क्यों कहता है जी कमांडर का ऑर्डर था कि इतने फासले में कोई आया तुम मार देना उसको मैं तो सैनिक हूं यहां का अन्न खाता हूं यहां मेरी ड्यूटी लगी हुई थी सैनिक का कर्तव्य यह है जो हुक्म मिले उसको पूरा करना अब मैं क्या करता कर दिया तो वो जो हमें पढ़ा रहा था और बता रहा था कि देखिए डिसिप्लिन जो अनुशासन है और जो बड़ों की आज्ञा है वो जो उनका फैसला है उसको मानने की क्या बात होती तो परमात्मा शिव बाबा जो हम कौरव या वालों की जो अपने उनके आचार्य हैं शास्त्र मत है उनके गुरु है अपने अलग किस्म के लेकिन हमारे जो शिव बाबा हमारे कमांडर हैं इस पांडव सेना के शिव शक्ति सेना के जो हमें श्रीमत देते हैं जो हमें ऑर्डर देते हैं ये नहीं करना ये बिल्कुल नहीं करना देखो ये मैं मना करता हूं बच्चे ये मत करना फिर भी अगर हम उसको करते हैं हमारी लॉयल्टी हमारी फेथफुलनेस हमारी ओबीडियंस हमारी उसके प्रति रेस्पेक्ट हमारी उसके प्रति लव क्या हुई कुछ भी नहीं हुई तो ये जो हमारे संबंध हैं जब हम समझें कि वो हमारा कमांडर भी है तो मैं ये कह रहा था भाई वो उसके साथ पिता का, शिक्षक का, सदगुरु का संबंध जोड़ना। तो चूंकि रोज हम उस मुरली को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाबा इतने प्यार से मीठे बच्चे हमें कहता है, और हम स्टूडेंट हैं, तो वो अभ्यास हमें होते होते ऐसा हो जाता है कि नेचुरल वे में संबंध हमारा जुड़ जाता है। लेकिन ये फ्रेंडशिप, वो एक ही हमारा सखा है, हमारे मन का मीत कोई और मनुष्य नहीं है, किसी और को हमने अपने दिल में घुसाया हुआ नहीं है, स्थान दिया हुआ नहीं है, हमारे मन का मीत वो एक शिव बाबा है जिसके साथ हमारी इतनी घनिष्ठता है। एक मैं, दूसरा वो, तीसरा ना कोई, उसमें किसी का प्रवेश नहीं है। वो जैसे पति पत्नी का संबंध पहले भाई वो टच, कोई दूसरा, बाबा ने कई दफा मुरली में भी मिसाल दी हुई है कि भाई पहले जब वो आके ब्राह्मण या ब्राह्मणी जो सगाई कराते, पहले तो ये रिवाज था कि दोनों की तरफ से एक बीच में कोई माता या भाई, ब्राह्मण या ब्राह्मणी जिसको कहो, जिसका ये काम होता था, वो सगाई कराते थे। फिर आके उस कन्या को बताया जाता था तेरा पति कैसा है, क्या करता है, तो उसके सारी चीज जब पता उसको होती थी तो उसके मन में दूसरे किसी पुरुष का चित्र नहीं होता था। तो पतिव्रता नारी जो है, जिस वक्त से उसकी सगाई हुई, मांगनी हुई, या जिस वक्त से उसको पता लगा कि भाई मेरा होनहार पति कौन है, उसके बाहर से लेके उसके मन के मंदिर से और कोई भी प्रतिमा उसमें नहीं है, उसके लिए एक ही से उसका कनेक्शन है। तो ये जो हमारा उसके प्रति परमात्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है, जो एक लौकिक रूप में जिसको पति पत्नी का नाता कहते हैं, कितना शुद्ध पवित्र, और कितना लोग उसके लिए बताते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, साहित्य में कई ऐसे कथाएं हैं कि भाई वो एक दफा गए, एक कबूतर बैठा था ऊपर, उसने बीक मार दी और उसने उसको देखा, वो जल गया, और फिर वो दूसरा आया कि भाई ये इसने क्या किया, मैं भी देखूं करके, उसका नहीं हुआ। ये लंबी कहानियां हैं। तो उसने बताया भाई तू क्या मुकाबला करता है उसके साथ, वो तो पतिव्रता नारी थी, उसकी इतना तपोबल था, वो तो किसी पर पुरुष की तरफ देखती भी नहीं है। बाद में लोगों ने घूंघट निकालने शुरू कर दिए, बुरका पहनना शुरू कर दिया, उससे क्या होता है? अगर मन भटक रहा है इधर उधर, मन में कई बसे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, तो बुरका पहनने से या वो ओढ़नी ओढ़ने से, चुन्नी ओढ़ने से, घूंघट निकालने से, आपने देखा होगा घूंघट लंबे लंबे निकाल के भी उसके बीच में से देखते हैं, तो उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता। या पतला पतली चुन्नी पहन ली घूंघट में से,
जिस पर उस सम्मेलन का नाम लिखा होता है, इस सम्मेलन का क्या नाम है, उसके अंतर्गत क्या कार्यक्रम होंगे। हमारे जीवन का अगर एक ही स्लोगन या मोटो हम मस्तक पर लिख दें, जैसे बर्तनों पर लिख देते हैं ना अच्छी तरह से, पहले यहाँ टैटू करा देते थे, किसी के हाथ पर ओम, किसी के हाथ पर हनुमान भी बना होता है, किसी कुछ किसी के कुछ, अगर हमारे मन पर ये टैटू हुआ हुआ हो, टैटू माना ऐसा लिखा हुआ जो मिटे नहीं, दूसरा तो मिट जाता है, ये बच्चे से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वो हाथ पर ओम लिखा हुआ है तो वो लिखा ही रहेगा। अगर यही हमारे मन पर लिखा हुआ हो कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं और वो हमारे संग अपने संग रहते हैं, अपने संग माना ऐसा नहीं कि अपना वो अपना रहते हैं हम अपना रहते हैं, ऐसा नहीं, वो भी हमारे संग रहते हैं, जब हम उनके संग रहते हैं तो वो हमारे संग रहते हैं। बच्चा जब छोटा बच्चा रात को माँ के साथ सोता है, कितना खुश होता है कि मैं माँ के पास सोया पड़ा हूं, और छोटा सा बच्चा अपनी टांग को माँ के ऊपर चढ़ाकर ये रात को खिसक ना जाए उसको काबू रखता है, क्यों? उसको ये है कि हम माँ के संग संग सोते हैं। जैसे हमारा यह है कि भगवान हमारा साथी है, तो ये बात अगर हमको याद रहे कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग रहते हैं, लेकिन भगवान किसका साथी होगा, जरा सोचो। बात कह देना एक अलग चीज है, उस बात को गंभीरता से समझना और सोचना ये परम अधिकार, ये श्रेष्ठ सौभाग्य किसको प्राप्त हो सकता है कि भगवान उसका साथी बने? आसान बात है, दुनिया में सबसे बिजीएस्ट, सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचा भगवान, महान से महान, वो कितनी विभूतियां गीता में बताई गई हैं। हाथियों में सबसे बड़ा ऐरावत है, पर्वतों में हिमालय है, और इस तरह से मंत्रों में ओम है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान इस तरह से सबसे बड़ा है, सब आत्माओं से श्रेष्ठ परमात्मा है, परम पुरुष है। हे अर्जुन, वो मैं हूं बताया हुआ, अपना परिचय दिया हुआ है। तो जो ऐसा सबसे महान है वो हमारा साथी है। ये क्या अधिकार हमें मिला, कैसे मिला? परमात्मा किसके साथ रहेगा? आप सोचिए, किसके साथ रहेगा? आपके अंदर से क्या आवाज आती है? जो उसके वफादार होंगे, फरमा बरदार होंगे, उसकी आज्ञा पर चलते होंगे, उसके बताए हुए नियमों का पालन करते होंगे, पवित्र होंगे, जिनके साथ उसका प्यार होगा और जिनका उसके साथ प्यार होगा। कोई भी दो दोस्त आपस में साथी होकर चलते हैं तो कैसे चलते हैं? जब उनका आपस में स्नेह होता है। पति पत्नी जो एक बहुत गहरा संबंध है, उसमें भी वो डाइवोर्स दे देते हैं, कहते हैं ये जीवन साथी है, वो भी छोड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि उन दोनों में से किसी के चरित्र पर किसी को शंका हो, या कोई अनबन लड़ाई झगड़ा रहता हो, किसी का व्यवहार ठीक ना हो, तो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। तो भगवान हमारा साथी कैसे होगा अगर हम उसके बताए हुए फरमान पर चलते होंगे? सिर्फ यही कह देना भगवान हमारा साथी है, इससे तो बात नहीं बनती। ये तो ख्याली पुलाव हैं, हवाई किले हैं। जैसे कोई सोचे मैं हवा में ऊपर आकाश में एक प्लाट लूंगा, क्योंकि दिल्ली में डीडीए तो देती नहीं, प्लाट जमीन देती नहीं गवर्नमेंट इतने बड़े, तो वो शेख चिल्ली के मंसूबे बनाने लगे कि मैं इतना बड़ा जमीन खरीदूंगा, उस पर ये ऐसा ऐसा फ्लैट बनाऊंगा। तो जैसे शेख चिल्ली का हाल हुआ था, उसका भी वही होगा, सारा महल उसके सिर पर आकर गिरेगा जो स्वप्नवत सोचेगा, वो तो स्वप्न है। तो निश्चित रूप से ये हमारा सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है, इससे ऊंची दुनिया में और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती कि भगवान जैसा साथी हमें मिला, भगवान स्वयं हमारा साथी बना। जब भगवान हमारा साथी बना तो गीता का अंतिम निष्कर्ष, लास्ट जो श्लोक है जहां गीता जाके समाप्त होती है, 18 अध्याय जहां पूरे होते हैं, उसका ये कंक्लूजन है कि जिधर अर्जुन जैसा पुरुषार्थी होगा और भगवान जैसा उसका साथी होगा, विजय उधर होगी। अरे हम कितने भी विकारी सही, जन्म जन्मांतर के अपराधी सही, पापी सही, अजामिलों से भी ज्यादा खराब, गणकों से भी ज्यादा पतित, हम में से कैसे भी खराब संस्कार हैं, मैले कुचैले, हमारा मन बहुत ही दूषित, महाविकारी हम हैं, लेकिन अगर हमने भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, वो जो उस्तादों का उस्ताद है, जो परम शिक्षक है, और जो उसने हमारा साथ दे दिया, उसने कह दिया मैं आपका साथी हूं, मनुष्य तो छोड़ जाते हैं, वायदा तोड़ जाते हैं। आज कहेंगे आपको हम मदद करेंगे, जब वक्त आएगा कहेंगे हमने तब तो कहा था, हमारे पास पैसे थे, हमने सोचा था आपको दे देंगे, अब तो हम यूज कर बैठे हैं, हमारे पास है नहीं। कोई कहेगा तब तो हम जवान थे, हमारे बाजुओं में भुजाओं में बल था, अब तो हम बुजुर्ग हो चुके, बाल हमारे सफेद हो गए, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। कोई कहेगा हमारा फलां परिचित था, हमने सोचा था आपका काम करा देंगे, अब तो वो ट्रांसफर हो गया। ये मनुष्य के आधार पर अगर हम रहे तो हमारे जीवन का यही हाल होगा। इसलिए जीवन रूपी नाव के खेवनहार सब यही कहते हैं, और मनुष्य तो कोई ना कभी डबो देता है, लेकिन वो एक परमात्मा ही है जो जीवन रूपी नाव को हमें इस पार से उस पार लगाए। वो उसके वचन सत्य हैं, वो सत्य स्वरूप है। उसने अगर हमें कह दिया है बच्चे मैं आपका साथ दूंगा, मेरा हाथ आपके ऊपर रहेगा, मैं आपका कल्याण करके ही रहूंगा, आया ही आपके लिए हूं, और हमने भी ये स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा। हम कैसे भी पतित हों, महापतित हों, पतितों के भी महामंडलेश्वर हों हम, महापण जिसको कहना चाहिए, रावणों के भी रावण जिसको कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा का हो गया, परमात्मा ने जिसको साथ देने का एक संकल्प कर लिया, उसके संकल्प अमोघ हैं। परमात्मा के संकल्प अमोघ हैं, वो कभी भी टलते नहीं, उसमें कभी भी कोई रुकावट ठहर नहीं सकती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति उसके रास्ते में रुकावट नहीं कर सकती। तो आप समझिए कि विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाबा जो कहते हैं कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय किन का जन्मसिद्ध अधिकार है? ऐसे जन्मसिद्ध अधिकार है जिन्होंने ये दिव्य जन्म लिया है, अलौकिक जन्म लिया है, ईश्वरीय जन्म लिया है, ईश्वर की गोद ली है और कहा है बाबा, मेरे बाबा, दिल की गहराई से, जिगर से, आंखों में अपने वो नीर धारण करके एक सच्चे मन से उसके आवाज निकली है, बाबा। और बाबा ने कहा, हाँ बच्चे। तो बस वायदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, उसका जो है विजय जन्म से अधिकार है। ऐसे विजय जन्म से अधिकार नहीं हो सकता है, ऐसे इट्स नॉट सो इजी, बट इट इज ऑल्सो इजी, इजी भी है। वो इस तरह से इजी है कि अगर हम उसके हो गए, हमने कह दिया ये हमारे बाबा हैं, सदगुरु हैं, शिक्षक हैं, और उसने कह दिया तुम मेरे बच्चे हो, उसकी जिम्मेवारी हो गई। अब वो अपने आप हमें पार लगाएगा। वो कहते हैं कि बस अब आपको और कुछ नहीं, जैसे मैं कहता चलूं, कदम ब कदम मेरे पीछे चले चलो, अंगुली मत छोड़ो, मेरा हाथ पकड़े रखो, मैं तुम्हें उस पार ले चलूंगा। थक जाओगे तो उठा भी लूंगा, अपने कंधे पर बिठा भी लूंगा। बाबा कहते हैं अपने पलकों पर बिठा के ले चलूंगा, पलकों पर। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, किसी कवि ने, किसी लेखक ने, किसी भी विचारक ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं तुझे पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। नैन जो सबसे पवित्र एक स्थान है, जहां पर जिसके तीसरे नेत्र की बात हम कहते हैं, उस पर बाबा कहता है मैं तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा। बस तीन दफा ऐसा किया और परलोक में पहुंच गए। पहले एक दफा सूक्ष्म वतन, फिर परलोक, परम धाम, पलकों पर बिठा के ले जाएगा। हो सकता है कि नहीं, कि नहीं हो सकता? आत्मा है ही क्या, ज्योति बिंदु है, हो गई, उसको क्या देर लगती है। तो तब हमारा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है अगर हमने उस परमात्मा का, उस बाबा बनाकर उसको पिता समझकर जन्म लिया है। अगर वो जन्म ही नहीं लिया, कई दफा लोग कहते ना जा रे जा, अभी जन्म ले जाकर आया है मेरे से लड़ने के लिए, जाके दूसरा जन्म ले, इस जन्म में तो तू कर ही नहीं सकता, बात ही नहीं। तो ये जन्म जो इस संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, किस मुहूर्त में जन्म हुआ, ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ माना जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म लोक से शिव बाबा आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। पुरुषोत्तम संगम युग मोस्ट ऑस्पिशियस है, अत्यंत कल्याणकारी युग है। उसमें हम इतने सौभाग्यशाली जो हमने जन्म लिया है, जो श्रेष्ठ जन्म लेता है किसी धनी मानी के पास, जिसका बहुत यश हो, जिसके पास बहुत धन हो, स्वास्थ्य हो, सुख हो, सुविधा हो सब प्रकार की, लेकिन शिव बाबा जो ये सबको देने वाले हैं, उनके पास हमारा जन्म हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा जो सृष्टि के आदि पिता हैं, भृगु ऋषि हैं, जो भाग्य की रेखा बनाने वाले विधाता हैं, ब्रह्मा के कई नाम हैं, विधाता भी उसी का नाम है। तो वो जो विधाता है, भाग्य विधाता, दाता और विधाता, जो हमारी किस्मत को बना दे, लिख डाले हमारी किस्मत, हर कोई अपनी कहते हैं भगवान से लिखवा के लाए अपनी किस्मत। तो जो आपने जन्म लिया है, आपकी तकदीर की रेखा खिंच गई, ब्रह्मा बाप ने बना दी, लेकिन वो डिपेंड किस पर करती है? वो हमारी हस्त रेखा किस पर डिपेंड करती है? हमारे मस्तक रेखा किस पर डिपेंड करती है? जितना हमारे मन की गहराई से ये निकले बाबा, प्यारे बाबा, ऊपरी ऊपरी नहीं, जिगर से, बहुत ही, जैसे बच्चा, जैसे बाबा कहते हैं आप मेरे सिक्की लदे बच्चे हो, तो हमें भी अपना ऐसा महसूस हो कि बाबा भी हमें बहुत सिख से मिला है, जिसको हमने जन्म जन्मांतर ढूंढा था। तो वो ऐसा जिसकी धारणा हो, ऐसा जिसका जन्म हुआ हो, ऐसा जो खुश नसीब हो, भगवान उसका साथी है, और जिसका वो साथी है उसकी विजय हुई पड़ी है। चिंता करने की जरूरत ही नहीं, अगर की हो तो आज से लेके छोड़ दो चिंता करना, कभी भी चिंता मत करना। हम जो हैं बच्चे वो चिंता नहीं, चिंता मणि है। चिंता मणि मानो ऐसा मणि जिसको अगर आप पहनो अंगूठी में, जिससे चिंता समाप्त हो जाए। तो हम लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों की चिंताओं को भी समाप्त करने वाले हैं, स्वयं की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं, हमने तो अपना दे दिया भविष्य उसके हाथ में, हमें क्या जरूरत है इस अपने किसी भी बात को सोचने की। तो भगवान उसका साथी है, तो आप सोचिए अगर हम झूठ बोलेंगे भगवान हमारा साथी होगा? वो सत्य है, और अगर हम झूठ बोलें, अगर हम अभिमान करें और वो कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, वो कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, बच्चे कहते हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, मुरली में आता है, और बाबा कहता है नहीं बच्चे मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, बच्चे जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, इतना बड़ा बाप, और वो ये कहता है कि मैं आपका गुलाम हूं। और हम किसी को कहते हैं जाओ रे जाओ, तुमने क्या समझ रखा है, हम करे कोई गुलाम है क्या, पैसे से खरीदा है क्या हमको, नहीं करते हम, जाओ। और वो भगवान कहता है कि नहीं मैं आपका गुलाम हूं, आप बच्चे जो कहोगे उस आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तो किस लिए? अगर हमारी धारणा ऐसी होगी जो उसके गुणों के विपरीत होगी, उसकी पर्सनैलिटी के कंट्रडिक्ट करती होगी, उसके समान नहीं होगी, इसलिए कहते हैं बार बार बाप समान बनो बाप समान बनो। अगर बाप समान नहीं बनेंगे तो भगवान साथ छोड़ देगा। एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस होता है। कोई भी वायदा हम करते हैं किसी के साथ, हम कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे, अगर ये करोगे, अगर ये करोगे तो मैं भी ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं भी फ्री हूं, मेरा भी कोई कंडीशन नहीं। तो अगर हम बाप समान नहीं बनते, हम स्टडी करते नहीं, योग लगाते नहीं, पवित्र बनते नहीं, मर्यादा के अनुसार चलते नहीं, श्रीमत का पालन करते नहीं, जो परमात्मा के गुण हैं कि दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी है, सबका शुभ चिंतक है, शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति उसकी है, दयालु है कृपालु है, विश्व का कल्याणकारी है, बेहद में टिका हुआ है, हमारे अगर वो गुण नहीं हैं, तो ये जो गीत है ये फिर उसके जीवन में सार्थक है जिसके जो भगवान के समान बनता है। क्योंकि जिनका आपस में विचारों का मेल होता है, मेल कई तरह का होता है, एक होता है विचारों का मेल, एक होता है संस्कारों का मेल, एक होता है व्यवहार का मेल, कई तरह का मेल होता है। तो मेला मनाते हैं हम, मिलन मनाते हैं, मिलन कई तरह का होता है। कई लोग जो कहते हैं हमारा परमात्मा से योग नहीं लगता, योग माना मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, ऐसा सुंदर मेला और दुनिया में कोई होता नहीं जो आत्मा और परमात्मा का होता है। बाबा सागर और नदियों की मिसाल देते हैं, वो तो है जब बाबा हमसे मिलते हैं, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा का मेला है वो सबसे सुंदर मेला है, उससे अधिक सुंदर मेला और कोई नहीं। उसमें जो रिमझिम है, मैं भी लाइट वो भी लाइट, आपने अनुभव किया होगा कि जब बिंदु रूप स्थिति में हम होते हैं बिल्कुल लाइट और माइट होते हैं, और हमें शरीर का अनुभव भी नहीं रहता, सामने जो हमारे बैठे हों, आंखें हमारी खुली हों, लगता है कि ये भी सब लाइट हैं, जैसे ज्योत जग रही है, और चारों तरफ लाइट के सागर में हम बैठे हैं, और उस शिव बाबा की याद में हमारा मन टिका हुआ है, हैं शरीर के रूप से बैठे हुए यहाँ, मन हमारा वहां है, और जहां पर लाइट ही लाइट है, और उस लाइट में शिव बाबा हैं, और वहां से लाइट और माइट हमें मिल रही है, और हम पर उतर उतर कर सारे विश्व में फैल रही है, वो कैसा सुंदर मिलन होगा। कितना सुंदर मिलन होगा, साइलेंस का वो मिलन, वो अनुभूति कितनी सुंदर होगी। तो वो मिलन कई लोग जो कहते हैं हमारा नहीं होता, क्यों नहीं मिलन होता? क्योंकि मिलन तब होता है जब पहले तो विचार मिलन हो, विश्वास मिलन हो, बुद्धि का मेल हो। इसलिए सबसे पहले हम किसी को 1 वीक कोर्स कराते हैं, उसके बिना योग नहीं उसका लगता। क्योंकि पहले जब तक बिलीफ्स, हमारे जो विश्वास है, परमात्मा की जो बुद्धि है, जो उसका नॉलेज है, अगर वो हमारी बुद्धि दिव्य ना हो तो हमारी बुद्धि का मेल उसकी बुद्धि के साथ मिलेगा नहीं, तो योग लगेगा कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ये सारा आप सुनते हो इसमें आपका निश्चय है। जब उसमें आपका निश्चय होगा, जो ज्ञान शिव बाबा में है वो ज्ञान आप में होगा, ये पहले मेल होगा, तब मिलन होगा। तो ये मिलन की, योग के लगने की पहली कंडीशन ये है कि निश्चय, उस ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसमें निश्चय होना। जितना जिसका अटल निश्चय है, अडोल निश्चय है, उतना उसका मन भी जो है वो पूरे रूप से स्थिर होगा, टिका रहेगा, एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर हलचल उसमें नहीं होगी। ये पहला मिलन है। दूसरा है वैचारिक मिलन, मनोमिलन जिसको कहा जाता है। अब हम सब ने ज्ञान तो ले लिया, बुद्धि की दृष्टि से तो हम सबका मेल है, ज्ञान तो हम सब एक ही लिए हुए हैं और एक ही बात मानते हैं, हमारा पिता कौन है, हम कौन है। लेकिन कई दफा विचार हमारे नहीं मिलते, कोई सेवा करनी है, कोई कार्य करना है, विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता, बार बार विचार नहीं मिलता। कई दफा विचार न मिलने से गलती हम ये कर बैठते हैं, हमारे स्नेह में कमी आनी शुरू हो जाती है, हम कहते हैं भाई ये तो विचारों का टकराव है। तो विचार भी अगर मिलते होंगे, बुद्धि अगर हमारी मिलती होगी, विचार भी अगर हमारे मिलते होंगे, तो ये दूसरा मिलन होगा। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तो पहले तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, जो हमने बाबा का ज्ञान लिया उसमें स्थित होते हैं। ये हो गया बुद्धि का मिलन। फिर मनोमिलन, मेरा जो अपना जो शिव बाबा का परिचय मुझे मिला, शिव बाबा के प्रति ही मेरे संकल्प चलेंगे मन में। बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, परम धाम या ब्रह्मलोक के वासी हैं। मन में और संकल्प ना होके, विचार ना होके, यही विचार चले, इसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू थिंक, विचार करना। ये यही विचार करना, ये मेडिटेशन कहलाता है। तो ये वैचारिक मिलन, जब हमारे वही विचार होंगे जो शिव बाबा ने हमें दिए हैं, तब हमारा योग लगेगा। पहले तो बुद्धि हमारी उसके दिए हुए ज्ञान में टिकी हुई हो, फिर हमारा मन उसके साथ मिला हुआ हो, फिर हमारा संस्कार मिला हुआ हो। संस्कार कैसे मिलेगा, वो तो अभी हमारे बदले नहीं, लेकिन हमारा जो आदि स्वरूप था, जो अनादि स्वरूप है, वो पवित्र है। इसलिए हम अपनी मेडिटेशन में ये भी कहते हैं मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। हूं नहीं, इस समय नहीं हूं, लेकिन जो मेरी रियल स्टेज है, आदि और अनादि, वो तो पवित्र है। तो वो संस्कार अपने में इमर्ज करता हूं, क्योंकि पवित्र के साथ मेरा मिलन होना है। जब तक मैं भी पवित्र नहीं होऊंगा, मेरा वो संस्कार पवित्र वाला इमर्ज नहीं होगा, तो मिलन नहीं होगा। इसलिए योग हमारा जो तीसरा तत्व है, एक बुद्धि का बताया, एक मन का, दूसरा ये तीसरा संस्कार का। जब तक संस्कार में हमारे ये नहीं होगा मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं। अगर आप ये कहने लगो मैं अशांत हूं, मैं दुखी हूं, हैं, मैं विकारी हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, जैसे भक्ति में कहते हैं, तो एकाग्रता थोड़ी होगी, योग थोड़ी लगेगा। वो तो उल्टे मार्ग पर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, हम उनसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। वो तो वियोग है परमात्मा से, वो बिछड़े हुए हैं, वो तो अपना रोना रो रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो तो वियोग है और हमारा योग है। तो हमारा मन का ये होता है, और मिलन होता है स्नेह से। अगर स्नेह नहीं तो मिलन नहीं। पास में बैठे हैं, जानते हैं एक दूसरे को, विचार भी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपस में प्रेम है नहीं, स्नेह है नहीं, लेन देन है नहीं, बातचीत है नहीं। तो स्नेह नहीं है तो भी जो गहराई से मिलन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, भाई हम मिले हुए हैं, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं आती। फिर हमारे मन में जब तक वो स्नेह इमर्ज ना हो, हमारा योग प्रेम योग है, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है कि वो हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, उनके कितने हैं, वो है ना हमारे गीत लाखों है एहसान तुम्हारे, आपके हमारे ऊपर कितने एहसान हैं, आपने हमें क्या से क्या बनाया है। तो वो जब तक हमारे मन में नहीं आएगा और हमारा प्रेम जागृत नहीं होगा, प्रेम की लव अगर बुझी हुई होगी तो लवलीन कैसे होंगे, वो लव ही नहीं है तो उसमें लीन कैसे होंगे। प्रेम की बाती ही नहीं है, बाती माना वो जो विक होती है, बत्ती जो जगती है, अगर वो है ही नहीं तो फिर वो योग लग नहीं सकता। तो वो जो पतंगे की मिसाल देते हैं महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, तो वो जो परवाने हैं वो शमा ही नहीं है, ये वो शमा है और हम परवानों की तरह से उस पर परवाना परवाना परवाह नहीं हमें किसी की, एक परमात्मा के सिवा, कहते हैं ना परवाना, तो हम परवाह ना किसी भी बात की परवाह नहीं और उस शिव बाबा पर फिदा हो जाए। वो जब तक हमारी स्थिति ना हो, ऐसे नहीं कि बड़ों की भी परवाह नहीं, सेंटर की भी परवाह नहीं, अपने जो फर्ज मैंने सुबह बताए थे उसकी भी परवाह नहीं, तो फिर तो छुट्टी हो गई है, स्कूल की छुट्टी कॉलेज की छुट्टी, फिर हमें आपकी परवाह नहीं, आपकी हमें परवाह नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। वो परवाह नहीं, बात को समझने की कोशिश करना, कहीं ये नहीं कहना जगदीश भाई ने ये कहा था, कई दफा ऐसा होता है। तो तब हमारा योग लगेगा जब वो स्नेह का भी मिलन होगा। ऐसे और भी योग के बहुत से हमारी खूबियां योग की, जिसकी वजह से हमारा योग अनुपम है, वो किसी और से मुकाबला ही नहीं उसका, क्योंकि जिस तरह से मिलन होता है वो सब चीजें इसमें हैं, तभी होता है। और फासले का होता है, आप देख लीजिए कि जो एक व्यक्ति अमेरिका रहता है, दूसरा यहां रहता है, फासला है, मिलन कैसे होगा, होता नहीं। लेकिन अब तरीके निकल आए हैं, टेलीफोन कर लो, फैक्स भेज दो, चलो वो वैसा मिलन फेस टू फेस ना सही, लेकिन मिलन जैसा कुछ हो जाता है, बातचीत तो हो जाती है, आवाज तो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और अभी तो टेलीफोन कई जगह ऐसे बन भी गए हैं जिसमें शक्ल भी साथ आती है, आवाज के साथ। वो व्यक्ति पहले तो छिप के गुस्सा करता था, मैंने ऐसा कहा क्या करता है तू, ये बोले मत कर ऐसी, तो वो टेलीफोन पर शक्ल तो नहीं आती थी, आवाज आती थी। अब वो शक्ल भी उसकी साथ आएगी तो वो जरा ठीक तरह से बोलेगा कि कहीं ये मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो वो भी आती है। तो मिलन वो फासले से भी फर्क पड़ जाता है। तो ये बेतार की तार, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो हमारा एक स्नेह से जो तार जुट जाए हमारी परमात्मा से, उस थॉट से, संकल्प से, क्योंकि थॉट इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी, द फास्टेस्ट एनर्जी, सबसे तेज जो शक्ति है वो संकल्प है, संकल्प की गति तीव्रतम है, इससे ही तो आप मापते हैं किसी चीज की गति। तो इससे इसका मतलब यह, सबसे सूक्ष्म तो ये है ना, और सबसे तेज तो ये है, लाइट तेज है, लाइट से तेज तो ये है संकल्प, जो लाइट की गति को भी माप लेती है। तो इससे हम आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, उस जो योग, उसे हम योग कहते हैं, उससे हमारा मिलन होता है। लेकिन वो मिलन, मैं ये कह रहा था, तभी होगा, वो परमात्मा का साथ, वो संग हमें तभी होगा जब वो हमारे में ये क्वालिटीज होंगी, उस जैसे विचार, उस जैसे संस्कार, व्यक्तित्व, उस जैसे हमारे जो व्यवहार, जैसे वो कहता है, जो ज्ञान हमें वो देता है, तब वो परमात्मा हमारा साथी होगा और हम उसके संग संग रहते होंगे, वो हमारे संग संग रहता होगा। अगर हमको ये महसूस हो वो हमारे साथ है, तो हमारा बोलचाल, हमारी धारणा फौरन ही बदल जाए, बदली रहे, वो क्या कहेगा, क्या सुनेगा। आपके साथ कोई जिज्ञासु नए नए चल रहे हो, आपको मन में गुस्सा भी आता हो किसी के प्रति, तो आप क्या कहेंगे, वो सुन लेगा, उस पर इम्प्रेशन खराब पड़ेगा, डिसर्विस हो जाएगी, चुप कर जाएंगे, अच्छा पीछे बात करेंगे, अभी छोड़ दो, नहीं तो उसकी डिसर्विस हो जाएगी। सोचते हैं ना, अब परमात्मा हमारे साथ है, हम गुस्सा करेंगे, हम किसी से नाराज होंगे, मनमुटाव करेंगे, उसको सहयोग ना देने की बात सोचेंगे, उससे लड़ाई झगड़ा करने की बात हमारी होगी, किसी के साथ अनुचित व्यवहार या अन्याय हम करेंगे। जब वो हमारे साथ है देख रहा है हमें, हम क्या कर रहे हैं, ये मत भूलो। अगर ये आपको याद रहे कि वो हम उसके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग रहते हैं और वो हमारा साथी है, तो फिर सारे पुरुषार्थ अपने आप ही रेल की पटरी पर ठीक तरह से, बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन से भी सुपर फास्ट चलेगा। सुपर फास्ट तो सुपर लेट पहुंचती है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक पहुंचेगी गाड़ी, अपनी मंजिल पर जाके पहुंचेगी। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। उसमें भी जो ये सारी बात है, मैं जो कह रहा था कि हमारे जो मन के दोष हैं, क्योंकि तीन चीजें होती हैं, मल, आवरण और विक्षेप। एक होता है मल, मन पर जो मैल चढ़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर का मैल चढ़ा हुआ है, बुरे काम करते 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 उस पर जैसे किसी चीज पर लेयर्स 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 आ जाती है, एक के ऊपर एक, तह पर तह जम जाती है। मिट्टी किसी ने साफ नहीं की, कोई बाथरूम साफ नहीं करता और उसमें वो काई जम जाती है और उस पर लेयर्स आ जाती है। या कहीं पर भी कुछ ऐसी जगह जहां सफाई कुछ तरह से ना हुई हो, क्या हालत उसकी होती है। तो ये भी जो हमारे आत्मा पर जन्म जन्मांतर का मैल है, उसकी लेयर्स हैं, 63 जन्म की लेयर्स हैं, उनको सारा कुरेदना पड़े, खोदना पड़े, खोद के सारा निकालना पड़े। ये जो मलम्मा है चढ़ा हुआ एलाय जो है, उसको निकालना पड़े, भट्टी से पिघलाना पड़े और उसको बाहर निकालना पड़े। तो वो एक होता है मल, जो जन्म जन्मांतर का हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। दूसरा होता है आवरण। जैसे मान लो कोई लाइट है, लाइट जग रही है, उसके ऊपर आपने कोई चिमनी चढ़ा दी, या आपकी खिड़कियां हैं शीशे की, उससे लाइट आती है, आपको डिस्टर्बेंस होती है, आप कहते हैं ये लाइट ना आए, तो आप आगे पर्दा लटका देते हैं, भाई पर्दे से वो लाइट जो है मध्यम पड़ जाएगी। ये आवरण है, इसको आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ये मल नहीं है, ये आवरण है, उस पर पर्दा है। तो मन पर कई दफा अज्ञानता का पर्दा, जिसको बाबा कहते हैं सूरज के सामने बादल आ जाता है थोड़े समय के लिए, तो कई दफा अच्छे चलते चलते भी माया के कुछ बातें हमारे सामने आके हमें छिपा देती, हमारी अच्छाई को वो दबा के और अपना प्रभाव दिखा जाती। अब सूर्य का ग्रहण आप देखते हैं, चंद्रमा का ग्रहण आप देखते हैं, पृथ्वी जब बीच में आती है तो वो भी काले दिखाई देते हैं, उसके आसपास वो दिखाई देता है, तो होता थोड़ी है, लेकिन उसकी परछाई जो लाइट कट हो जाती है, वो उस तरह का आवरण जैसा आ जाता है। तो ये कुछ समय के लिए ये फिर भी आ जाते हैं इस तरह की जो बातें। तीसरा, कोई बाहर परिस्थिति से नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपने ही मन में अपने आप जो विक्षेपता हमारी आती है, मन में दोष कोई आ जाता है, कोई कहेगा आप भाषण करो, हम में आएगा नहीं नहीं हम तो अच्छा भाषण नहीं कर सकते, हम नहीं करते, दूसरे को चांस दे दो, हम भाषण नहीं करेंगे और कोई काम करेंगे। तो क्यों नहीं करोगे? नहीं, हमारा मन नहीं है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मन उचाट होगा, या ये होगा कि हमसे तो दूसरे अच्छे हैं, हम तो किसी काम के नहीं, आ तो गए बाबा आपके लाए हुए हम हैं तो सही, लाई कदा आए थे कदा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी चले। तो ये ऐसा महसूस होगा कि आ तो गए हम, लेकिन वो खुशी नहीं। अब जब दूसरे को चांस दे दिया और दूसरे ने कर लिया, तो लगेगा ये तो मैं भी कर सकती थी, मेरे को चांस मिला नहीं, गंवा दिया। दूसरी दफा आएगा वो टीचर कहेगी इसको छोड़ दो, ये मना कर देती है वक्त पर, अभी मान भी जाएगी तो लास्ट मोमेंट कहेगी मेरे सिर में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं करती, इसको छोड़ दो। तो फिर उसको होगा कि देखो ये मैंने एक दफा मना किया था, ये हमेशा के लिए इन्होंने सोच लिया, किया खुद, एक दफा छोड़ दिया, दूसरी दफा छोड़ दिया, फिर पश्चाताप होगा, ये हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन शुरुआत अपने आप हम करते हैं, मना कर देते हैं। भाई करोगे तो अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, दूसरा भी कोई अच्छा करता है तो अभ्यास किया है उसने, मेहनत की है, सोचा है, तैयारी की है, आप भी करो तो भाव मदद करेगा आपकी, लेकिन आप करोगे ही नहीं। करने वाले की विद्या है, वो कहते हैं भाई जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, परफेक्शन तो प्रैक्टिस से आती है, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो फिर और अपने में निराशा आएगी,
पता नहीं मैं गलत फैसला कर बैठती हूँ, मैंने उसको मना कर दिया था, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था। तो अपने जो हित चाहने वाले भला चाहने वाले होंगे, नहीं नहीं तुम, हम तुम्हें मदद करेंगे, तू अच्छा भाषण करती है, किसने कहा है, चल तू 10 मिनट कर ले, 15 मिनट मत करना, ये बात बोल देना। बस नहीं कह बैठे, जिद कर बैठे तो नहीं करना तो नहीं करना, और उसके बाद फिर पछताते रहना तो क्या उसका फायदा होगा। वो थोड़े समय के लिए मन में अपने ही अंदर से विक्षेपता आ गई, वो जो मन जो ठीक था स्थिर था, अपने में कॉन्फिडेंस को हमने खो दिया या और कोई संकल्प आ गया, हम तो ज्ञान में नहीं चल सकते। क्यों? मुझे 5 साल 3 साल हो गए हैं, योग तो मेरा लगता नहीं, मैं तो योगी बन नहीं सकती। ये सारे लोग कहते हैं बिंदु रूप अवस्था में स्थित हो, योग की ज्वाला जगाओ, ज्वालामुखी बनो और ये लाइट और माइट हाउस बनो, मेरे को तो जरा भी अनुभव नहीं, पता नहीं मैं वो जीवन से भी गई, इस जीवन से भी गई, मेरा तो योग मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि मैं कोई बन जाऊंगी। माँ बाप ने कहा मैं आ गई, या टीचर ने कहा, या दूसरों की देखा देखी मैं आ गई, छोड़ो छोड़ो मैं अब अपने जीवन का फैसला कर लूं, लेट में करूं, अब भी कर लूं तो अच्छा है। अरे इतने खुशनसीब भगवान तुम्हें साथी के रूप में मिला है, उसको तुमने हाथ दिया है, तुम्हारा इतना महान भाग्य है, इतना करोड़ों में से चुन लिया भगवान ने, ये कोई कम बात नहीं है, और क्या सोच रही हो फिर पछताना उसके बाद गलत सोचकर। तो ऐसे ऐसे निकम्मे संकल्प जो हैं थोड़ी देर के लिए बेकार, जो गिराने वाले, अपने आप को खुद ही अपने अंदर से निकले हुए। कोई कहेंगे भाई क्या बात हुई है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ कहा है? नहीं। तो क्या है? कुछ नहीं ना, मेरा अपना ही है ना, वो बोले ये मेरी अपनी ही गलती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे क्या अपने से तेरे को आज हुआ? सुबह तो तू ठीक थी, हंस बैल रही थी, फिर क्या हो गया? कहती है यही तो मैं खुद अपने को समझती नहीं, मेरे को क्या होता है, अपने आप ही कुछ मुसीबत हो जाती है, फिर उल्टी चारपाई डाल के बैठी हुई है, फिर वो ऐसी करती है रोज कुछ ना कुछ। तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम, अपने लिए भी प्रॉब्लम, ये कोई ना कोई चूहा गया तो बिल्ली आई, बिल्ली गई तो कुत्ता आया, ये आता रहता, ये विक्षेपता ये तीसरी चीज है। तो हमने मल आवरण और विक्षेपता इन तीनों को समाप्त करना है, पवित्र जो पूर्ण रूप से बनना है, तो पवित्रता में ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अब कई ऐसे हैं जिनके जीवन में विक्षेपता खत्म हो गई है और जो आवरण है वो भी काफी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन जो 63 जन्म के संस्कार हैं उसकी भोग ना भोग रहे हैं, वो पूरे खत्म नहीं हुए, वो जो विकर्म किए हुए थे उनका जो अभी असर आ रहा है थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में, वो भोगना चलती है। तो वो उस मल से, जैसे शरीर में कहीं भी कोई मल रुक जाता है, किसी के दांत में तो दांत उसके सड़ जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, दर्द होगा, आंख में तो आंख में फूंसी निकल आएगी, नजर खराब हो जाएगी, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टी आएगी, सिर में दर्द होगा, वगैरह वगैरह होगा। तो जहां भी कोई मल रुकता है वहां पर बीमारी होती है, डिजीज होती है। ऐसे ही वो जो मल है, जो पहले का इकट्ठा मलबा हुआ हुआ है, कई लेयर्स उसकी उतार दी लेकिन थोड़ा सा रहा हुआ है, जब तक पूरा अपनी पूरी चमक में आया नहीं, 16 कला संपन्न हुआ नहीं, वो आता रहेगा। उनको हमने पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उस पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए ये हमें जो साथी मिला है उसकी मदद से हम ये सारा कुछ पूरा कर पाएंगे, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि अगर हम ये समझें कि वो हमारा साथी है। उस साथी से हमें फायदा ये होगा कि ये हमारा साथी है, हमको ऐसा नहीं करना है, उससे ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कहते हैं भाई 3 बिंदु को याद रखो, फुल स्टॉप कह दो, ब्रेक कह दो। तो वो ब्रेक और फुल स्टॉप इजी हो जाएगा अगर हम ये सोच लें कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं। ऐसा नहीं वो तो परम धाम में बैठा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं उसको क्या पता है जी, वो तो कुछ और ही दुनिया में भक्तों को साक्षात्कार कराने गया होगा, या कुछ किसी का हिसाब किताब चुकता कर रहा होगा, वट एवर जो भी कुछ कर रहा हो, तो हम अपने उसमें मस्त हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस की भी ये वैरायटी है, ये भी सोल कॉन्शियसनेस है। और गॉड कॉन्शियसनेस है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, मन को टिकाते हैं, एकाग्र करते हैं, वो भी सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस है। ये चलते फिरते उठते बैठते जो हमारे कार्य में हमें ये याद रहे कि भगवान हमारा साथी है, ये सोल कॉन्शियसनेस है, गॉड कॉन्शियसनेस है। जो कर्म अकर्म विकर्म की गति आप बताते हैं, उसमें हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे हों, उसकी ये एक विधि है। अगर ये हमें याद रहेगा, हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ होंगे उसके प्रभाव से। आप करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर लाइट का है, साथी हैं आप शरीर में हड्डी मांस के हैं और वो लाइट का है, तो साथी कैसे होंगे? वो तो आपके आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। अगर कदम ब कदम उसके साथ नहीं चलेंगे, और साथ तभी चल पाएंगे जब आप लाइट स्वरूप हों, है कि नहीं? तो जब आप सोचेंगे कि वो मेरे साथ है, वो कैसे सोचेंगे? वो तो लाइट का है। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि वो लाइट स्वरूप बाबा मेरे साथी है, आप उसी क्षण लाइट स्वरूप हो जाएंगे। करके देखो अनुभव, आप उसी टाइम महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी नहीं है आपके साथ, आप लाइट होके चल रहे हैं, वो हल्कापन महसूस होगा। और जब वो हमारे साथी है, हमें किस चीज का खतरा है, किस चीज का भय है? जो सर्व समर्थ, सर्वश्रेष्ठ, हमें गाइड करने वाला, रक्षा करने वाला, बचाने वाला हमारा साथी है, देन वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। फिर कोई डरने की बात ही नहीं है, फिर हमारे कर्म अपने स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सोल कॉन्शियसनेस का, गॉड कॉन्शियसनेस के बाबा ने कई तरीके बताए हैं, जिनमें से एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका जो है वो ये है कि उसके संग संग हम रहते हैं। तो उसके संग संग रहते हैं, खाना खाते हैं उसके साथ खाते हैं, और जो कुछ भी करते हैं, अपना जो सेवा कर रहे हैं हम, तो हम किसी को समझा रहे हैं बाबा हमारे साथ है, वो हमें टच करेगा, हमारे कान में कुछ कहेगा, हमें गाइड करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा हमें गाइडेंस मिल रही है उसकी, क्योंकि साथी है। साथ का अनुभव कैसे होगा आपको? साथ जो होता है उसका किसी न किसी तरीके से अनुभव होता है, तभी तो हम कहते हैं वो हमारे साथ है, नहीं तो हम कैसे सोचेंगे नहीं हमारे साथ है। और वो साथ नहीं छोड़ता है हमारा, हम छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी दुनिया में जो बदकिस्मती है, जिसको कहना चाहिए द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, वो ये है कि हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। हम क्रोध करने को तैयार हैं, उससे बाज नहीं आते, भले भगवान का साथ छूटता है तो छूट जाए, भगवान चला जाएगा हमारा साथ छोड़ के। अगर हमने क्रोध किया, वो वहां ठहर के क्या करेगा? हमारे ये लक्षण देखेगा, वो तो कहता है हियर नो इविल, वो हमारे क्रोध के इविल वचन सुनेगा, क्या पड़ी है उसको टाइम वेस्ट करने की? वो हमारे साथ रहेगा या भाग जाएगा, उड़ जाएगा यहां से? रहेगा हमारे साथ। हम गलत काम अगर करेंगे, इसका मतलब ये हुआ भगवान को हम कहेंगे भाई अब तू जा, अब हमने दूसरा काम करना है, अब तू अगर रहेगा तो हम वो काम कर नहीं सकते, तेरी छुट्टी है, यही चाहते हम। और जो बाबा कहते हैं भाई क्रोध मुक्त बनो, ये करो वो करो, वो सब आसानी से हो जाए, अगर हमें ये याद रहे कि वो हमारा साथी है, हम उसके संग है, वो हमारे संग है। एक बात ये याद रहे तो कितना परिवर्तन हमारे में शीघ्रता से आ जाए, लेकिन इसको हम भूल जाते हैं, तो ये बात हमारे ध्यान में रहे। दूसरी बात यह है कि जब वो साथी हैं, हम साथी में से भी वो हमसे सीनियर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो साथी तो है हमारा, हमारा गाइड है ना, और वो हमारा पिता है ना, पिता के रूप में साथी है, शिक्षक के रूप में साथी है, हमारे सदगुरु के रूप में साथी है, हमारे दोस्त के रूप में भी साथी है, खुदा दोस्त भी है, ये सब संबंधों के साथ कारण से हमारा साथी है। तो अगर वो हमारा साथी है, हम उसकी बात मानेंगे नहीं, तो कहेगा भाई ठीक है, ये देख ये चौरस्ता आ गया है, तुम्हारा हमारा साथ अब निभेगा नहीं, तुम्हारा लफड़ा कुछ अलग है, हमारा कहना कुछ अलग है, तू इधर जाना है कि इधर जाना है ये बता, तूने जिधर जाना है जा, मैं फिर दूसरा रास्ता लेता हूं, तेरा मेरा आप बनेगी नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? तेरे को जब मैं कहता हूं तो सुनता तो है नहीं, फिर मेरे साथ चलने की जरूरत क्या है? वाई यू नीड मी, वाई शुड आई गो विद यू, आपके साथ मैं क्यों चलूं? कोई हमारा मेल मिलता नहीं, बात मिलती नहीं, आपस में विचार मिलते नहीं, कहना तुम सुनते नहीं, ऐसे ही हम बुत बन के तुम्हारे साथ चलेंगे क्या? आपके साथ कोई चले तो आप कहेंगे मैं तुम्हारे कोई हाथ की लाठी हूं क्या, तुम्हारी छड़ी हूं, वाई शुड आई गो विद यू, यू गो अलोन, आप अपना रास्ता लो मैं अपना रास्ता लेता हूं। तो वो हमारा साथी तभी बनेगा ना जब हम उसके साथ उसके बताए हुए उसके अनुसार चलेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम उसके प्रति समर्पित हों, वो तब हमारा साथी है, ये हमारी उसकी कंडीशन है। अगर हम समर्पित बुद्धि नहीं है, हमें वो टच करने का अधिकार वो हम उसको नहीं देते, उसको ये गाइडेंस हमसे हमें वो दे उसका अधिकार हमें नहीं देते, वो हमें ब्लेस करे ये अधिकार हमें नहीं देते, तो फिर हम कैसे चलेंगे। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं, बहनों का इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कोई भी जिज्ञासु आता है तो क्या कहते हैं, दो बातें कहते हैं, आपने सुना हो, ध्यान दिया होगा, आपका कईयों ने परिचय दिया होगा, ये बहन समर्पित है, इतने साल से समर्पित है। समर्पित का अर्थ जानते हो, समर्पित किसको कहा जाता है, समर्पित का क्या मतलब होता है। और दूसरा कहते हैं जी ये इस सेंटर को संभालने के निमित्त है, कहते हैं ना वो जिज्ञासु भाई लोग, घर गृहस्थ में रहने वाले लोग जब बहन जी का परिचय देते हैं, किसी को लेकर आते हैं शिकार को पकड़कर, बाबा की भाषा में कि बहन जी इसका शिकार करो, तो वो क्या परिचय देते हैं कि ये बहन समर्पित है, सेंटर को संभालने के निमित्त है। तो ये निमित्त और समर्पित, ये हमारे ज्ञान के बहुत ही गहरे शब्द हैं। हमारा अपना व्याकरण है, अपना हमारा शब्द कोश है, और अगर उस भाषा को हम समझते नहीं तो भाव को कैसे समझेंगे। तो ये बातें पूरी तरह से समझ लीजिए कि आप कौन हैं। जब आप कहते हैं अपने लौकिक माँ बाप को भी आपने कह दिया मैं समर्पित हो गई, वो भी समझे बैठे हैं कि बेटी हमारी समर्पित हो गई। किसी का बेटा गया था कहीं, तो उन्होंने कहा भाई ये शायद चांदनी चौक में गया हुआ है, वो वृंदावन में गया हुआ था, तो वो कुछ और समझ रहे थे और वो कहीं और लटका पड़ा था। तो वो माँ बाप तो समझते हैं स्कूल में, अब मुझे पहली दफा मेरे लौकिक पिता स्कूल में बिठाने ले गए, जब स्कूल में मैंने शुरू किया पढ़ना, कितना छोटा था हूंगा, तो मुझे स्कूल में ले गए पहले ही दिन जब ले गए, पहले तो सोच रहा था जाऊं कि ना जाऊं, आजादी का जीवन खत्म हो जाएगा, खेल कूद रुक जाएगा, लेकिन वो ले गए, पढ़ना तो है ही। जब ले गए, अभी मैंने स्कूल में प्रवेश किया तो मास्टर जी एक लड़के की पिटाई कर रहे थे, बड़े जोर से, पिटाई भी नहीं धुनाई कर रहे थे अच्छी तरह से, धुनाई समझते हैं ना, जैसे रुई की धुनाई की जाती है, एक छड़ी लेके अच्छी तरह से उसको कहां मारते हैं, कहां लगती है पता ही नहीं, वो बेचारा रोता जाए, छोटा सा बच्चा, और वो उसकी धुनाई कर रहे थे। मैंने सोचा मैं तो यहां इस स्कूल में नहीं आऊंगा, मैं भाग गया। तो पिताजी मुझे वहां स्कूल में बिठा कर आए, मेरा नाम दाखिल कराया, ये इसका नाम है, इसको स्कूल में दाखिल कीजिए, बिठा दिया एक तरफ। जब उन्होंने उसकी पिटाई की, मैं चुपके से खिसक गया, बहुत तेज रफ्तारी से भाग के घर में ऊपर जाके छिप गया। तो मेरे लौकिक पिता ने जाके माता जी को कहा, आज मैं उसको दाखिल कराया, आज से स्कूल में चला गया। अरे उन्होंने कहा वो तो ऊपर बैठा है। तुमने उसको स्कूल में कहां दाखिल कराया, कहते हैं नहीं पहले बैठा होगा, तुम पिछली बात कह रही हो, मैं अभी तो उसको छोड़ के आ रहा हूं। उसने कहा कि नहीं मैं भी अभी की बात कर रही हूं, जरा जाके ऊपर देखो वो छिपा बैठा। तो उसकी धुनाई देख के, उसकी पिटाई देख के मैं भाग गया वहां से। तो भाव क्या हुआ कहने का, कि जो अगर हमारे कर्म हमारे जैसे वो सिखा रहे थे, जिस प्रकार से धुनाई कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, उसका क्या नतीजा हुआ कि किसी व्यक्ति को वो हुआ, और वो समझ रहे हैं कि हम स्कूल में रख कर आए थे, और हम स्कूल में थे नहीं, हम लौकिक घर में वापस चले गए। ऐसे ही समर्पित हैं, जैसे वो समझ रहे थे मैं स्कूल में दाखिल कराया हूं, हमारे लौकिक माँ बाप रिश्तेदार सब समझे बैठे हैं बहन जी समर्पित हैं, और बहन जी का मन घर में है, चलो शरीर से तो नहीं भाग रहे मेरी तरह से, लेकिन मन अगर घर में है या कहीं इधर या उधर है, तो वो बैठे हुए वहां हैं और वो छोड़ गए उनको यहां, ये क्या समर्पित है, इसको समर्पित कहा जाएगा। अगर दुनिया की चीजें हमें चाहिए, अगर वही हमारे नाज़ो अंदाज़ हैं, वही हमारे नखरे हैं, वही चीजें हमें खींचती हैं, वही आकर्षण हमारे रहे पड़े हैं तो उसको समर्पित कहते हैं। तो परमात्मा हमारा साथी पूरे रूप से तभी बनेगा चाहे वो कोई घर गृहस्थ वाला हो या जिसको हम समर्पित कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ वाले बुद्धि से समर्पित नहीं होते, वो बेचारे कमाते हैं क्योंकि उन्होंने गृहस्थी रची है, उनकी पालना करनी होती है, इसलिए मजबूर हैं कि वो उनको कमाना ही है, यज्ञ पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन बहुतों को हमने देखा है कि उनका सारा बाकी जीवन वो धन से भी सहयोगी, मन से भी सहयोगी, तन से भी सहयोगी, अपना सारा टाइम अपने बाबा की सेवा में लगाते हैं, वो भी समर्पित है, बल्कि सेंटर्स पर आने वाले ज्यादा आराम करते हैं, ज्यादा आराम करते हैं। अगर आप देखें उनको फैसिलिटीज ज्यादा हैं, उनको बेचारों को बाजार से पहले दाल चावल जाके ले आओ, आटा ले आओ, फिर या तो गेहूं ले आओ, उसको बीनो, उसको चुनो, फिर पिसाओ, फिर उसका आटा गूंदो, फिर रोटी बनाओ, एक एक को बैठ के उभारो, फिर थाली में डाल के उसको खाओ, फिर थाली बर्तन साफ करो, फिर उसके बाद फिर अगली तैयारी हो और सारा दिन काम करो, दफ्तर में काम करो, पैसा कमाओ, कितनी मुसीबत है। और टीचर्स को समर्पित का मतलब क्या है कि जिसको सब पका पकाया मिले, जिसको धुला धुलाया मिले, जिसको बना बनाया मिले, सजा सजाया मिले, जिसके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सब जो काम कहें वो हुक्म जी हजूर कह के वो कर लाएं, फलाने इधर आओ बाजार से नारियल खरीद लाओ, फलाने इधर आओ जरा बाजार से कल के लिए भोग के लिए फल ले आओ, फलाने इधर आ तू जरा ये कपड़े धो दे, फलाने इधर आ जा जरा ये पोछा लगा दे। एक अच्छे भले मिनिस्टर के भी इतने सर्वेंट्स नहीं होते बताइए, जितना ब्रह्मा कुमारियों के। और वो सर्वेंट्स ऑर्डिनरी नहीं, जज, वकील, डॉक्टर सब सर्वेंट बताइए। बहन जी जो कहे, बहन जी चल रही है ऐसे। और वो जो जज साहब हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो बहन जी का थैला उठा के चल रहे हैं। और दूसरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर का किट वो उठा के ले जाते हैं, और डॉक्टर साहब बहन जी का बैग लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वीवीआईपी हैं बहन जी, इसको समर्पित कहते हैं। हैं? किसको कहते हैं? चलो आप में से कोई बताओ, समर्पित किसको कहते हैं? सारा टाइम आप सुन रहे हैं, कुछ सुनाओ तो सही, समर्पित किसको कहते हैं? आप सोचिए, अगर हम यज्ञ के प्रति, शिव बाबा के प्रति, सेवा के प्रति लोगों ने जो कुछ दिया अपने ऊपर खर्च करते चले जाते हैं, हैं, और सब फैसिलिटीज अपनाते हैं, और जो सेंटर्स बनाते हैं यज्ञ के लिए, जो भाई बहन समझते हैं कि हमारे यज्ञ, हमारे क्लासरूम अच्छा हो, हमारे बैठने उठने का स्थान ठीक हो, सेवा के लिए देते हैं बनाने के लिए, और हम समझे ये हमारा आश्रम है, हमको यहां से कोई हिला नहीं सकता क्योंकि हमने बनाया है ये, भाई हमने निकाला है, इसको ज्ञान हमने दिया। आपने निकाला कहां से? निकाला जमीन में दबा पड़ा था क्या? कहते हैं हमने निकाला है। अगर वो भाई समझे, कहेंगे बहन जी हमारे लिए निकाला कह रही है, मैं कहां कोई चूहेदानी में फंसा हुआ था जो मुझे निकाला है, कहां से निकाला है, हमारे शब्द भी अजीब हैं, कहते ना इसको पकड़ो पकड़ो, तो वो बेचारा समझता है ये पकड़ के क्या कचूमर ना निकाल दे हमारा, क्या पकड़ेंगे, भाषा ही अजीब है। तो वो अगर हम ये समझते हैं कि ये हमारा आश्रम है, हमारा सेंटर है, ये कुर्सियां, मेजे, सोफाज, ये फर्नीचर, ये अलमारी, ये सारी सजावट हमने अपनी मर्जी के मुताबिक 10-15-20 साल खर्च करके लगाई है, बनाई है, अब हम कहां जाएंगे? अब हम जाके दूसरा सेंटर खोलेंगे? हमें छोटे से सेंटर पर बिठा रहे हैं जाके, जहां पर मुश्किल से 2-4 पाई आती है, घूमने फिरने की जगह भी नहीं, खाना बनाने के लिए भी हरी बोल लगा पड़ा है, और सब तरह की मेहनत करने की जरूरत है। हम फिर से वो शुरू करेंगे अपना पुरुषार्थ, जबकि वो जो बनाया है हमने वहां दूसरी बहन को रख रहे हैं, ये तो हम सोचेंगे पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसको फेवर कर रहे हैं, हमको निकाल रहे हैं, हमने गलत काम क्या किया है। जिज्ञासु को कहेंगे लिखो चिट्ठी, दस्तखत करो सब, हमारी बहन जी को चेंज मत करो, ये बहन जी अच्छी बहन है, इसने हमें निकाला है, वो भी कहते हैं निकाला है, जो भाषा एक दूसरे की सुनते सुनते वही चढ़ जाती है जबान पर, हैं? और इसको आप यहां रखो, ये हमारा गुटबंदी, ये यूनियंस जैसे लेबर यूनियंस होती है, और ये जिज्ञासुओं को बजाय ज्ञान देने के इन कामों में लगाना, और ये हमारे सेंटर जो बाबा के सेंटर हैं, ये निमित्त जिसको निमित्त कहा गया था, ये निमित्त इसी को कहते हैं। यानी सब चीज का उल्टा अर्थ है। किसी ने कहा ना भाई प्याज खाते हो, कहते हैं हरे 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 हरे, यानी हरे प्याज खाते हैं। मतलब उसका ये था, ये तो समझेगा प्याज नहीं खाते, हरे हरे बोलता है, भक्त आदमी है, हरे हरे बोलता है। और महाभाव उसका ये था, सिर्फ प्याज ही नहीं खाते साहब, हरे हरे प्याज खाते हैं, बात मत पूछिए। अरे भाई शराब पीते हो, कहता राम 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 राम, यानी वो राम शराब होती है, हम राम राम पीते, वो पीते। तो निमित्त का ये मतलब है कि जो चीजें दूसरों की माल माल, राम राम जपना पराया माल अपना, वो हमारा हिसाब है। कि जो लोगों ने राम जी के नाम से दिया, भगवान के नाम से दिया, उसको हम हड़प करके बैठे हैं मठाधीश बन के, और अपना आश्रम खोल के महामंडलेश्वर बन के गद्दी हमने भी बना दी है, ये तो कोई तरीके, इसको समर्पित कहते हैं। आप लोगों ने समर्पित का भाव समझा है, सबने समर्पित का भाव समझा है। हमारा कुछ भी नहीं, हमारे हाथ हैंड्स अप, हमारी जेब खाली, हमारे हाथ खाली, ये सब बाबा का है। वो करण करावन हार है, जो आए हैं उसके भेजे हुए आए हैं, उसके बच्चे हैं, उनका भाग्य बनाने वाला वो है। हम निमित्त हैं, हमसे जो सेवा हुई है उसका भाग्य हमें मिलेगा। हमारा कुछ भी नहीं, जिस समय हमें हुक्म मिले कि यहां से जाओ, दूसरी बात करने की जरूरत नहीं, वहां से फौरन जाओ, दैट्स ऑल। लेट अस नॉट रिपीट इट, दूसरी दफा कहने की जरूरत ही नहीं होती। अगर देवता बनना है तो देवता को कहते हैं इशारा काफी, मनुष्य को कहना पड़ता है, देवता को इशारा देना पड़ता है। ये बड़ों का काम है, जिसको जहां रखना हो, कोई कारण होंगे, वो जानते हैं हमें क्यों भेज रहे हैं। शायद वो हमें ये समझते हैं कि ये योग्य है, जैसे इसने यहां सेंटर जमाया है, वहां सेंटर ठीक नहीं चल रहा है, ये वहां जाएगी तो बाबा की सर्विस को बढ़ाएगी। और हम सोच रहे हैं कि हमें पनिश क्यों कर रहे हो, हमें वहां क्यों भेज रहे हो। अरे आप पे उम्मीद रख के बाबा ने आपको ये नया मौका और दिया है, जैसे यहां आपने हरियाली की है, वहां भी जाकर ये फूल उगाओ, बगीचा बनाओ बाबा का, तो बाबा की कितनी आपके ऊपर कृपा होगी। और हमेशा सब ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है, जगह जगह आपकी डिमांड होगी, कहीं भी होगी, आप एक्सपर्ट होंगे, और आप यहां बैठ के आराम से आपकी बाकी उम्र ऐश करना चाहते हो, अभी से रिटायर्ड लाइफ हो गई, ये गलत है। तो समर्पित जिसको कहा जाता है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं स्वयं जब बाबा की हूं तो मेरा बाकी क्या है, ये सब बाबा का है, क्योंकि मैं स्वयं बाबा की हूं, मेरे एक बाबा, दूसरा ना कुछ ना कोई। तो हमेशा हम उपराम रहे, हमारा मन जैसे भी हो, आपने देखा होगा हनुमान के पांव दिखाते हैं, दोनों पांव कभी भी आप उसके जमीन पर नहीं देखेंगे, ऐसे खड़ा होता है या ऐसे खड़ा होता, एक पांव उठा रहता है, चलता रहता है। तो वो जो भी परिव्राजक जिसको कहा जाता है, भाई ब्रह्मा ने संतान रची, वो परिव्राजक थे, एक जगह पर बैठने वाले नहीं थे। गंगा एक जगह पर बैठती नहीं, जाती है भारत में एक जगह से दूसरी जगह, सबको हरियाली बनाते हुए। तो अगर हम ये समझें कि हमारा कर्तव्य ये नहीं है, तो आप देखिए कि आप पर बाबा की कितनी उम्मीदें हैं, वो आपका साथी बनने को तैयार है, आपके संग संग रहने को तैयार है, लेकिन उसके बताए हुए कुछ बातें हैं, उनको आप पालन करेंगे तो आपको नित्य ऐसे नए अच्छे घनिष्ठ श्रेष्ठ अनुभव होंगे कि कैसे आपका साथी है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, आपको यही महसूस होगा कि बाबा ने कैसे हमारा साथ दिया, हमें कैसे बचाया वक्त पर, कैसे गाइडेंस दी, जो बात हमारे मन चित्त में नहीं थी उसने हमें टच की, और जो अनुभव हमें पहले नहीं थे अब वो नए नए अनुभव कराए। आपको चाहिए क्या? आपको घर में रेफ्रिजरेटर चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, गद्देदार पलंग चाहिए, या मार्बल वाले फ्लोर चाहिए, या कुछ अच्छे अच्छे बाथरूम लैट्रिन बने हुए श्रेष्ठ मॉडर्न टाइप के चाहिए, या आपको स्वयं भगवान को साथी बना के नए नए अच्छे अच्छे योग के गहरे गहरे अनुभव, कोई सिद्धि, कोई उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति चाहिए, क्या चाहिए? डिसाइड फॉर योरसेल्फ, एक तरफ वो एक तरफ वो, चुन लो क्या चाहिए। भाई वो दुर्योधन भी गया और युधिष्ठिर भी गया, तो उसने कहा क्या चाहिए, उसने कहा जी पहले इनसे पूछ लो। उसने कहा मुझे आपकी सारी सेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा अच्छा तथास्तु, तुझे मिलेगी सारी सेना। युधिष्ठिर ने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, दैट्स ऑल। आपकी मार्ग प्रदर्शना चाहिए, आपकी छत्र छाया चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मार्ग प्रदर्शना, आपकी गाइडेंस चाहिए, दैट्स ऑल। तो विजय किसकी हुई? सारी महाभारत का सार क्या है? जिधर साक्षात भगवान स्वयं थे, सारी सेना नारायणी सेना जो उसको कहते हैं, वो सारी सेना उस तरफ थी, लेकिन वो उस तरफ था अकेला। विजय किसकी हुई? उसकी हुई। तो क्या चाहिए ये सोच लो, क्या चाहिए? यू हैव टू सिलेक्ट फॉर योर सेल्फ, जज फॉर योर सेल्फ। वो कहते हैं विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, सुखार्थी नाम कुतो विद्या। जो विद्या पढ़ना चाहता है वो अगर सुख के जीवन, ऐशो इशरत के जीवन, नरम गदेलों वाले जीवन जीना चाहता है, अगर जीवन में ऐशो इशरत चाहता है, तो फिर उसका विद्या नहीं अध्ययन कर सकता। विद्या से जो सुगंधि आती है, विद्या का जो एक सार निकलता है, जो उससे इतर एसेंस निकलता है, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। वो मेहनत नहीं जिसको बाबा कहते हैं भाई मैं बच्चों की मेहनत नहीं दे सकता, नॉट दैट। लेकिन अध्ययन करो, योग का अभ्यास करो, सेवा में अपना दिन रात लगाओ। ये जो हमारा जीवन है इसमें लगो, बनिस्बत इसके कि भाई ताजमहल आगरा बनाने की कोशिश करो, वो बना के और फिर उसमें फंस जाओ। बनना है, उड़ती कला में जाना है, फरिश्ता बनना है, तो ये सब लगाओ झुकाओ इन चीजों के प्रति, आकर्षण, ये तेरा मेरा, ये इनको छोड़ के जब हम उपरामचित होंगे और सब बाबा का है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब ये हमारे मन की स्थिति होगी तब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, तब भगवान हमारा साथी है, विजय हमारी निश्चित है। ओम शांति।